अल्लाह ताला हमसे इसका हक अदा करवाए। किसी भी किस्म की रुकावट के बग़ैर हम अल्लाह ताला के पैगाम को अपने दिल पर महसूस करें और फिर इसका हक अदा करने में खप जाएं। इंशाअल्लाह ताला आज हम कंटिन्यू करेंगे पारा नंबर 10 को, आयत नंबर 43 43 से। नख्मतुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सद्री व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुयस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। सूरह तौबा में ग़ज़वे तबूक का तज़किरा चल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द दुनिया के बेहतरीन लोग मौजूद हैं और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस्लाम की इमारत को कायम किया। अल्लाह ताला ने इनके दिल में ईमान को कूट कूट के भर दिया था। लेकिन हर मुआशरे में और हर दौर में कुछ ना कुछ ऐसे लोग ज़रूर रहे कि वो मतलूबा ईमान तक नहीं पहुँचे होते। कुछ ऐसे ही लोगों ने जब इस सफ़र में अपने आप को पीछे रखा, लेकिन जो ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और अभी रास्तों में थे तो अल्लाह ताला खबरें देने लग गया कि अब आपसे बहुत सारी इजाज़तें मांगेंगे, आपसे रुख्सतें तलब करेंगे, आपकी निगाहों में सच्चा साबित होंगे। लेकिन आपकी निगाहों में अगर हो भी गए तो फ़र्क क्या पड़ेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईज़ी गोइंग थे, अपने मिजाज के एतबार से बहुत आसानी से बात को समझ जाते थे और किसी की खोज में नहीं पड़ते थे। और याद रखिए कि जिस इंसान का अपना दिल खरा होता है ना, वो दूसरे के लिए कभी भी तसव्वुर भी नहीं करता कि वो धोखा देगा। ऊपर से प्यार मोहब्बत का इजहार होगा और अंदर से वो जड़ें काटेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही एक अंदाज़ था। तो अल्लाह ताला ने बहुत ही प्यार से, जिसको मैं कह सकती हूँ कि अल्लाह के नबी के साथ अल्लाह ताला की मोहब्बत का इजहार है इस आयत में। देखिएगा आयत नंबर 43 को, अफअल्लाहु अनका लिमा जिन तलहुम हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन। अंदाज कितना प्यारा है। पहले कहा जा रहा है अल्लाह तुझे माफ़ करे, यानी अल्लाह ताला का ये अंदाज़ वाकई ऐसे लगता है कभी कभी देखने में, सुनने पढ़ने में, कि अल्लाह के नबी सामने बैठे हैं और अल्लाह ताला उनसे बात कर रहे हैं। और फिर क्या फरमाया? अल्लाह ताला तुझे माफ़ फरमा दे, यानी गोया के फरमा दिया तूने इन्हें क्यों इजाज़त दे दी, बग़ैर इसके कि तेरे सामने सच्चे लोग खुल जाएं और तू झूठे लोगों को भी जान ले। सुबहान अल्लाह। इससे भी पता चलता है कि अल्लाह के नबी को लोगों के दिलों का हाल नहीं पता होता था। ये तो अल्लाह की शान ही है जो दिलों पे नज़र रखे और वो जाने और उसके बंदे जाने। अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान और यकीन रखने वाले माली और जानी जिहाद से रुक रहने की कभी भी तुझसे इजाज़त तलब नहीं करेंगे। और अल्लाह ताला परहेज़कारों को खूब जानता है। अपने दिल पे लेकर सोचिए, कितना प्यारा टेस्ट है मेरा अपने लिए। अगर माल और जान अल्लाह के रास्ते की जिद्दोजहद में लग रही है ना, तो आपके पास आसमान से ये जवाब आ गया है कि फिर आपका अल्लाह और क़यामत पर ईमान भी है और यकीन भी है, और आप कभी भी उज़र तलब नहीं करते और पीछे नहीं रहते, बल्कि आप आगे रहते हैं। और अल्लाह ताला आपको ये ऑनर मुबारक करे। ये इजाज़त तो तुझसे वही तलब करते हैं जिन्हें ना तो अल्लाह पर ईमान है, ना आखरत के दिन का यकीन है, जिनके दिल शक में पड़े हुए हैं और वो अपने शक ही में सरगर्दां हैं। चार चीज़ें अगर आप जल्दी में नोट कर लें इस आयत को बाद में देखकर, तो आपको एक बहुत खूबसूरत मेयार मिल जाएगा कि अमूमन नेकियों के मौके पे नेकियों से पीछे रहने या खैर का हिस्सा बनने से जो लोग पीछे रहते हैं उसकी वजह क्या होती है। अल्लाह ना करे कि हम में से किसी के ऊपर ये बातें फिट आएँ। देखिए, ज़िंदगी में आपके सामने कोई नेकी का मौका आ जाए, किसी प्रोजेक्ट की सूरत में, कोई इल्मी बात, कोई और सोशल वर्क, कोई कुछ, तो उस वक्त अपने आप को चेक किया करें, आखिरत में जाकर कहीं हमें कोई धचका ही ना लग जाए। अगर इनका इरादा जिहाद के लिए निकलने का होता तो वो इस सफ़र के लिए सामान की तैयारी कर रखते। ऐसे ही होता है ना, कहीं जाना होता है तो चुपके चुपके आप चीज़ें जमा करते हैं। अच्छा, चलें ये साथ लेनी है, ये छोड़नी है, बैग रख लूँ, कच्चा पक्का सामान तैयार होता है ना। आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि देखिए कैन वक्त पे उन्हीं की गाड़ी छूट जाती है जो पहले तैयार नहीं होते। तो अपने लिए जम लिखिए, चुपके चुपके नेकियों के लिए तैयार रहना। कोई नेकी का मौका है, अल्लाह करे ये मुझे ही ऑफ़र हो जाए और मैं इसका हक अदा करूं, और ऐसा ना हो कि मुझे देकर वापस ले ली जाए। इस तरीके से जब आप तड़पेंगे, तलब करेंगे, अल्लाह देगा। और एक जुमला लिख लें, अल्लाह के रास्ते के काम मांगने पड़ते हैं, इसके लिए सर सजदों में रख के रातों को रोना पड़ता है, मिन्नत समाजत करनी पड़ती है कि अल्लाह मुझसे अपने काम ले ले। वरना इतनी बड़ी ऑनर अल्लाह ना तो आपको किसी रौनक के साथ देगा, ना आपके अंदर कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम होगा फिर देगा। अल्लाह ताला बड़ी आजजी के साथ देता है, और जिनको देकर छीनता है असल में वो अल्लाह ने दिखा दिया कि तुम डिज़र्व नहीं थे, लेकिन तुम समझते थे कि मैं इस काम को करने का हक रखता हूँ। तो हमेशा अपने अंदर को साफ़ सुथरा करते जाएं, आपका दीन सिक्योर होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह को इनका उठना पसंद ही ना था। कांप के आप भी, मैं भी कांप गई। कुछ लोग आते नहीं और कुछ आने नहीं दिए जाते। अल्लाह के दीन में यही काम है, यही असूल है। दिल खोटा हो, अंदर कुछ और बाहर कुछ और हो, तो अल्लाह फिर कहते हैं आप बैठिए आराम फरमाइए। दीन को भी तो अल्लाह ने सिक्योर करना है ना, इसलिए ने हरकत से ही रोक दिया, यानी मूव नहीं हुए, कोई टस से मस नहीं हुए। इतनी बड़ी नेकी सामने है, एक क्लिक से कितनों तक पैगाम पहुंच जाता। लेकिन नहीं, हम क्यों करें, हम को एडमिन है, हम पे कोई जिम्मेदारी है, हमारा कोई इस पे नाम लिखा है, हम तो इसको प्रमोट नहीं करते। इस तरह की नेगेटिविटी उन लोगों के दिलों में आती है जिनको अल्लाह ही ना करने दे। और कह दिया गया तुम बैठने वालों के साथ बैठे रहो, यानी आराम फरमाइए, आप घर में रहें और औरतों के साथ आप भी बैठें। आप देखिए कि अमूमन मर्द घर में नहीं बैठते ना, ये एक हमारे असूल भी है। अच्छा चूड़ियाँ पहन लो, घरों में बैठ जाओ, तो अल्लाह ताला बाज़ तो ऐसे लोगों को फिर कहते हैं तुम आराम करो, तुम्हें जो अच्छा लगता था ना वही करो। और साथ ही साथ अल्लाह ने अपने नबी को भी तसल्ली दी कि देखिए आप इनके ना आने पर या इनके साथ छोड़ जाने पर परेशान ना होइएगा, क्योंकि लो खरजू फीकुम मा ज़ादकुम इल्ला खबाला, अगर ये तुम में मिलकर निकलते भी तो तुम्हारे लिए सवाए फसाद के और कोई चीज़ ना बढ़ाते, बल्कि तुम्हारे दरमियान खूब घोड़े दौड़ा देते। किस चीज़ के? साजिशों के, फितनों के, गीबतों के, क्रॉस क्वेश्चनिंग के, ये हुआ उसने ये किया वो ऐसा। याद रखिए अगर मुनाफिकत के साथ बंदा अल्लाह के रास्ते के काम शुरू भी कर देना तो वो वहाँ जाकर मसले ही क्रिएट करता है। तो ऐसे बंदे का फिर ना होना ज़्यादा बेहतर है, और तुम में फितना डालने की तलाश में रहते, इनके मानने वाले खुद तुम में मौजूद हैं और अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। देखिए अगर अल्लाह के नबी दिलों के भेद जान रहे होते तो अल्लाह ताला को ये आयत कहने की क्या ज़रूरत थी। आप अपनी सादगी और मासूमियत और भोलपन की वजह से हर एक को अपने पास कर लेते थे। और अल्लाह के नबी की एक हदीस का खुलासा भी यही है कि मोमिन भोला भाला होता है, प्यार करता है उसे प्यार किया जाता है, मतलब बहुत ईजी गोइंग जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं। तो अल्लाह के नबी बहुत जल्दी लोगों को अपने करीब कर लेते थे, लेकिन ज़ाहरा के पीछे रहनुमाई तो अल्लाह की थी ना, अल्लाह ने दीन की भी हिफाजत करनी थी और अल्लाह ने अपने नबी की भी हिफाजत करनी थी। तो यहाँ बता दिया कि देखो ज़रा केयरफुल रहना, हर एक संजीदा नहीं है, हर एक ऐसा नहीं, और अगर तुम में मिलकर निकलते भी तो तुम्हारे लिए सिवाय फसाद के और कोई चीज़ ना बढ़ाते। अब ये क्या मुराद है? देखिए ऐसे लोगों का दिल काम में तो लगता नहीं था ना, तो फिर गॉसिप करते थे। इस आयत के साथ तो लफ्ज़ गॉसिप लिख लीजिए कि वो लोग जो दीन के काम में जुटे होते हैं, जो दीन को अपनी ज़िंदगी का शार बनाते हैं, उनके पास वक्त ही नहीं होता उसने क्या कहा, उसने क्या किया, किसने करना था, किसके ज़िम्मे, ऐसी बातें। यानी वो सिर्फ लोगों को डिस्कस नहीं करते रहते, वो कामों को डिस्कस करते हैं। और बेहतरीन टीम वो है जो काम को डिस्कस करे, और बदतरीन काम करने का माहौल वह जहाँ हर वक्त कोई दूसरे को ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी या चाबी तुम्हारे पास थी, अब तुमने करना था, मैंने ये कह दिया, मैंने पहले के, याद रखिए वहाँ से बरकत उठ जाएगी। यही इशारा दिया गया कि फिर ऐसे लोग जिन्होंने आकर फिर कीड़े निकालने और कह लीजिए कि उस काम के अंदर लोगों को मज़ीद रुकावटें दिखानी है, तो फिर ऐसे लोग बेहतर है कि ना हों। और अल्लाह ताला तो हर एक के ऊपर नज़र रखता ही है। ये तो इससे पहले भी फितने की तलाश करते रहे हैं, यानी अब तबूक का मौका कोई नया थोड़ी है, आपके पीछे पूरी तारीख है, गवाही है। देखिए कि क्या क्या हुआ था गज़वे बनु मुस्तलक के आखिर में क्या हुआ, और एक से एक जंग के अंदर आप देखिए मुनाफिकों के फितने फैलाने की मिसालें आज सीरत की किताबों में भरी हुई हैं। और तेरे लिए कामों को उलट पुलट करते रहे हैं, अल्लाह के नबी को फोकस नहीं रहने देते थे। याद रखिए कि अल्लाह के नबी एक लीडर भी थे, एक मुअल्लिम भी थे, एक दाई भी थे। तो जब वो इस तरह की उल्टी सीधी बातें सुनते तो आपका काम अपसेट तो होता ही था, यहाँ तक कि हक आ पहुँचा और अल्लाह का हुक्म गालिब आ गया, बावजूद इसके कि वो ना खुशी में ही रहे। यानी इनको खुश नहीं होना था, ये खुश नहीं रहे। दुआ कीजिए अल्लाह हम अपने काम से खुश हो जाएं। और इनमें से कोई तो कहता है मुझे इजाज़त दे दीजिए, मुझे फितने में ना डालिए, आगाह रहो वो फितने में पड़ चुके हैं और यकीनन दोजख काफिरों को घेर लेने वाली है। या नोट कीजिए फितना गुनाह के मानी में आया। ऐसा शख्स ये कौन सा था जिसकी बात है कि कहता था रूमी औरतें बड़ी खूबसूरत होती हैं, मैं उनके हुस्न का शिकार ना हो जाऊं तो बेहतर है कि आप मुझे ना ले जाएं। कभी आप मैदान जंग में भी ये बात सोच सकते हैं, यानी दीन का काम हो और कोई ऐसी बातें सोचेगा कि फलां लड़की मुझे अच्छी लग जाएगी तो फलां मर्द अच्छा लग जाएगा, नाउज़ुबिल्ला। तो ऐसे लोग फिर असल में शांति वाले कानून की जद में आ जाते हैं। आपको अगर कोई भलाई मिल जाए तो इन्हें बुरा लगता है, और अगर कोई बुराई पहुंच जाए तो ये कहते हैं हमने अपना मामला पहले से दुरुस्त कर लिया था, यानी हमने बैक डोर खोला हुआ था, हमारे कई और भी ताल्लुकात है, हमने कहीं और भी बात करके रखी थी कि अगर ये ना करेंगे तो वो कर लेंगे, इधर ये नहीं होगा तो उधर ये कर लेंगे। याद रखिए कि मुनाफिक हदीस भी है एक बड़ी खूबसूरत, जिस वक्त नहीं सुना सकती आपको, खुलासा ये है कि वो दो रास्तों का साथी है, जैसे एक बकरी है दो गल्लों के बीच में रहती है, जिधर उसको खैर दिखती है वो उधर चलती है। सहाबा कराम कश्तियाँ जला कर आए थे, आज भी मेरे समेत आपके समेत हर वही शख्स अपने काम पे मरते दम तक जमेगा जो सारी कश्तियाँ जला देगा, और अगर आपके कोई बात नहीं ये नहीं तो वो नहीं, फ़ायदा ही देना है उसको, नहीं देंगे उसको नहीं देंगे, तो फिर तो वही बात हो गई कि शौहर बीवी अपने एक दूसरे को यही धमकियाँ देते रहे। बीवी ही बनना है ना आपकी, नहीं तो किसी की, शौहर ही बनना है ना। तो याद रखिए फितरत का असूल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, आप अल्लाह को कह अच्छा आप नहीं मेरी मानते मैं कोई और अल्लाह बना लेती हूँ, यही तो शिर्क है। तो आज अपने आप को फोकस कीजिए, आपके मेरे नसीब में अल्लाह ने जो देना था वो था, जैसे हमने अपनी तकदीर के फैसले कबूल किए ना, माँ बाप बदल नहीं सकते, भाई बहन नहीं बदलेंगे हम, आपका मेरा क्या नंबर है अपनी फैमिली में नहीं पता, जहाँ शादी होनी थी हो गई, तो याद रखिए ये भी नसीब होता है आपका, जो नसीब है अगर आप अपने नसीब पर खुश नहीं होंगे तो फिर आप कभी भी खुश नहीं होंगे। मगर वो तो बड़े ही तराते हुए लौटते हैं, आप कह दीजिए कि हमें सिवाय अल्लाह के हमारे हक में लिखे हुए के कोई चीज़ पहुंच ही नहीं सकती, वो हमारा कारसाज और मौला है। मोमिनों को अल्लाह ताला की ज़ात पर ही भरोसा करना चाहिए। बड़ी खूबसूरत आयत है, आप देखिए कि ऊपर भलाई मिलने और बुराई के ऊपर रिएक्शन और रिस्पॉन्स बदलने वाले लोगों की बात थी, जिसको आप कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, कामयाबी के पीछे जाने वाले। कामयाबी आई तो हम भी आएंगे, अगर इधर कामयाबी ना मिली तो हम भाग जाएंगे। याद रखिए कि मुनाफिक का सबसे ज़्यादा बड़ा इशू कामयाबी होती है, वो शरीयत का वो वर्जन मांगते हैं जो सब करें, उनको अच्छा ही नहीं लगता कि हम अल्लाह की भी माने और फिर लोगों को भी नाराज़ करें। अब ये जो आयत 51 हमारे सामने है ना, इसमें तकदीर का मौजू है, हमारे इस पारे का थीम कराहियतुल मौत, इसको इसके साथ अगर आप जोड़कर देखें तो कोई मुसीबत नहीं आती मगर अल्लाह के इज़्ज़त से। अगर मेरा आपका सिर्फ इस एक छोटी सी आयत पर ईमान आ जाए, यकीन आ जाए, तो यकीन करिए चाहे लॉकडाउन है, चाहे कोरोना वायरस फैल गया, चाहे आपके मेरे घर में बीमारी परेशानी है, हम इस पर मुतमईन होंगे कि ये सब मेरे रब का फैसला है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा ही नहीं। जैसे आपका मेरा पैदा होना, कहाँ क्या, ये आपके रब का मेरे रब का फैसला था, तो खुश रहने का ये राज है इस आयत में, इसको ओवरलुक ना कीजिएगा। अल्लाह ने ये दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई, ताकि देखे कि कौन अच्छे अमल करता है, कौन बुरे करता है, कौन सेहत में करता है, कौन बीमारी में करता है, सब्र कौन करता है, शुक्र कौन करता है। और आज अबुल अमरुल मोमिन, मोमिन का तो मामला ही बड़ा प्यारा है, खुशी में शुक्र करता है, दुख में सब्र कर लेता है, और दोनों में खैर है। तो कभी तकलीफ है, कभी आसानी है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, कभी की रातें लंबी, कभी दिन लंबे, लेकिन याद रखे फाइनमालोसरी युसरा, इन्नमालोसरी युसरा। सूरत अलम नशरह की आयतों में अल्लाह ने दो दफ़ा कह दिया कि उसर के साथ युसर है, तो बाद में नहीं है, ये नहीं कहा कि फाइन बादल उसरी युसरा, उसर युसर में ही होता है। कैसे? जो उस हालात में खुश रहे उसके लिए युसर है, जो चीखो पुकार करता रहे उसमें उसर है। मिसाल लीजिएगा, इंजेक्शन लगता है, जो बच्चा बाजू ढीला छोड़ दे, रिलैक्स कर ले, अपने आप को माँ की गोद में दे दे, उसको इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन कोई अपना जिस्म अकड़ा दे, खे जाए, हाय मुठियाँ बीज, हाय मैं मर गया, इधर सुई गई चीख लिया, तो फिर उसकी माल उसरी उसरा ना हुई। बात समझ गई? बड़ी प्यारी सी बात है ये, यानी आप अपनी मुश्किल को या मुश्किल हालात में रिलैक्स रहें, काम रहिए, कूल रहिए, तो वो मुश्किल खुशी में बदल जाएगी, और असल में अल्लाह सुबहाना ताला तंगी और तकलीफ़ में डालकर इंसान को सहूलतों की कदर भी करवाते हैं। तो ये आयत दर्जों को बढ़ाने के लिए, गुनाहों को मिटाने के लिए, अल्लाह ताला जब कभी बंदे को मुश्किल हालात में डालें तो सीखिए इसमें है क्या, और ऐसे वक्तों पे अल्लाह ताला इस्लाह भी करना चाहते हैं। ये तकदीर का हिस्सा है, उसी का फैसला मुझ पर लगता है, बिलकदरी खैरी ही व शर्री ही मिन अल्लाह। ईमान मुफस्सल में आप बचपन से सुनते आए यही जुमला बोला जाता है, तो अल्लाह ताला के ऊपर नजरें लगाइए। फ़ायदा क्या होता है इसका? बंदों से गिले ख़त्म हो जाते हैं, फ़लाँ मुल्क से ये निकला, हाय उन्होंने ये क्यों किया, क्या ज़रूरत है ये बातें करने की। गैब अल्लाह को पता है। फिर आप देखिए इस आयत में एक बड़ा ही खूबसूरत नुक्ता है, कतब अल्लाहु लना, लाम ली जो होता है फॉर के मानों में आता है इंग्लिश में, ये अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया और इसको हक में लिखना कहते हैं। इसके अलावा अलैना का लफ्ज़ आता है, अगर आप सूरह बकरा का आखिरी रुकू देखे तो ला तुआखिज़ना, और उसमें अलैना और लना का फ़र्क बहुत खूबसूरत है। क्या पता चला कि जो भी मुश्किल आती है तकदीर का लिखा होता है वो हमारे हक में बेहतर होता है, हमारे खिलाफ़ नहीं बल्कि हमारे हक में होता है। तो आप अपनी ज़िंदगी का एक असूल बनाइए, तकदीर पर ईमान लाऊंगी, बहुत सारी बरकतें होंगी। फरमाया कि जिसने कज़ा व कदर में अल्लाह के राज को पा लिया इस पर मुसीबतें आसान हो जाती हैं। ये तफसीर अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद में ये बात लिखी हुई है। तो जब कोई चीज़ मेरे अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होती तो मुझे शोर व गुल करने की क्या ज़रूरत है। और आगे पढ़ेंगे दूसरे पारे में सूरह यूनुस में भी आयत आ रही है, वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हुवा, उस मालिक के हाथ में है डोरियाँ, आप और मैं कठपुतली की तरह अपने हाथ तो हिलाते हैं लेकिन ऊपर से धागों के सिरे अल्लाह के सिवाय। अल्लाह एक कुन कह दे, एक सेकंड में आपकी बीमारी, परेशानी, गुर्बत, जहालत, औलाद की नाफरमानी एक सेकंड में दूर हो जाए। सारी ज़िंदगी का बिस्तर पे पड़ा हुआ इंसान घोड़े की तरह भागना शुरू हो जाए, लेकिन अल्लाह आपको एक वक्त पे ये चीज़ें देता है। और याद रखिए कि जब इन चीज़ों में पढ़कर किसी और को नफ़े नुकसान का मालिक समझते हैं ना, तो ये एक शिर्क की किस्म है और इसकी वजह से फिर इंसान अल्लाह ताला से दूर होते हैं। एक जुमला लिख लीजिए, पूरी दुनिया भी मिलकर अगर नफ़ा पहुंचाना चाहे अल्लाह के हुक्म के बगैर वो ऐसा नहीं कर सकती। बड़ी प्यारी रिवायत है इब्ने अब्बास से अल्लाह के नबी की, मुसनद अहमद 2669 में, उसमें यही लिखा गया कि जान रखो कि अगर सारी उम्मत मिलकर भी तुम्हें नफ़ा पहुँचाना चाहे तो तुम्हें नफ़ा नहीं पहुँचा सकती सिवाय इसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और अगर वो सारे मिलकर तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहें तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकते सिवाय इसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। ये बात मोमिन को बहादुर कर देती है, जुरतमंद कर देती है, और हमारी तारीख इस चीज़ की गवाह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, किसके हुक्म से आग ठंडी और सलामती वाली हो गई? आग ने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, क्योंकि इल्ला मा कतबल्लाहुलना, अल्लाह ने नहीं लिखा था कि इब्राहिम जलते। इसी तरह खालिद बिन वलीद का नाम सुना होगा, 100 के करीब जंगों में शरीक हुए, कहते हैं जिस्म पर एक बालिश भर जगह नहीं थी जहाँ तीर, तलवार या नेजे का निशान ना हो, लेकिन मौत बिस्तर पे आई। इनके ऊपर एक पूरा लेक्चर है हमारा इसी नाम से, खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी, और उस पर यकीन करें कि ईमान बढ़ाने वाली बात है उसमें। इन लोगों को देखिए तो ये क्यों मैदान जंगों में भी ऐसे ही गुनगुनाते हुए जाते थे जैसे कोई शायद मॉल में जाता होगा। शहादत का शौक इनको जीने से ज़्यादा था, तो यकीन हो जाए कि ये बात है तो फिर आप कभी दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे और किसी को कोसेंगे नहीं। बस जब आप कहीं रिश्ता करते हैं अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा निपटता, और कभी नहीं अच्छा निपटता आप कोसते हैं क्यों किया, किसके कहने पे किया, और ना समझ लोग हैं जो एक दूसरे को कोसते रहे। बाप कहेगा कि माँ ने किया, माँ कहेगी बाप ने किया, बेटा कहेगा फला ने कहा, उसने कहा, भाई रोते रहिए या हंस लीजिए, ये आपका नसीब है। इंसान को पहुँचता वही है जो तकदीर में, और ये कोई आज की बात थोड़ी है, तकदीर के फैसले तो दुनिया में आने से पहले लिख चुके। सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया और इसे मुस्तकबिल में होने वाली हर चीज़ को लिखने का हुक्म दिया। सही मुस्लिम 6919 में यह हदीस मौजूद है। तो 50,000 साल पहले मखलूक की तकदीरें अल्लाह ने लिख दी, ज़मीन व आसमान की तख्लीक से पहले, और उस वक्त अल्लाह ताला का अर्श पानी पे था। तो मुझे यकीन है कि कराहियतुल मौत दिल से निकल जाएगी जब हमें इसका यकीन आएगा। बस में गए, गाड़ी में गए, जहाज़ में गए, हादसा होना है तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा। ना तो बहुत नेमतों को अपने हाथ में लीजिए, ये भी तकब्बुर है, ये मैंने किया, मेरी कोशिश है, मेरा नाम है, मैं ये करती हूँ, मेरी वजह से इतने आते हैं जाते हैं, ये मैं, ये भी तकदीर का खिलाफ है। आपको क्या पता किसी एक ज़ईफ़ इंसान के कमज़ोरी की वजह से अल्लाह ताला आपके घर में बरकत दे रहा हो, तो अल्लाह ताला आपको मुझे इस आयत पे दिल जान के साथ गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। और हर चीज़ की तकदीर है, ये ना सोचिए कि इंसानों के रिश्ते नातों और इसी बीमारी सेहत की तकदीर है, और तकदीर से आगे कोई चीज़ बढ़ नहीं सकती। अल्लाह के नबी ने ये बात हमें बता दी, उम्र भी लिखा हुआ, रिस्क भी, अमल भी। आप जो आज इस वक्त अच्छा काम कर रहे हैं आपको पता था आप करेंगे? इस वक्त पे आप ये जुमले मेरे से सुन रहे हैं तकदीर के बारे में, कि आपको कल पता था कि बिल्कुल एग्जैक्टली ये जुमले मैं सुनूंगी? तो जब आप और मैं नहीं जानते थे तो फिर इतना अकड़ने की क्या ज़रूरत है? तो फिर करें क्या? इस सारी बात को सुनने के बाद पहली बात यह है कि वाविला छोड़ दें, तकलीफ़ों बीमारियों में अपने आप को आगे करें, ईमान को बढ़ाएं। ऐसे वक्तों में हमारा ईमान खुलता है, हमारा तवक्कुल खुल जाता है। और जितना आप इस चीज़ को झुठलाएंगे उतना आपका दिल दुखी और परेशान होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे आपको अल्लाह के लिखे हुए फ़ैसलों पे राज़ी होने वाला बना दे, और जितना ज़्यादा आप इस पे राज़ी होंगे पता भी नहीं चलेगा और तकलीफ़ गुजर जाएगी। قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا। आप देखिए कि जब आप इस बात का यकीन करते हैं तो जितनी बातें मैंने की हैं उसको अगर एक छोटे से मैप की सूरत में, ईमान बिलकदर मज़बूत होता है, कोई मुसीबत नहीं आती मगर अल्लाह के इज़्ज़न से, ये पता चल जाता है कि दुनिया दारुल इम्तिहान है, और फ़ाइन्नमा अल-उस्री युस्रा, और हमें नहीं मिल सकता मगर वो जो अल्लाह ने हमारे नसीब में रख दिया है। तो फरमाया कह दीजिए कि तुम हमारे बारे में जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो वो दो भलाइयों में से एक भलाई है, और हम तुम्हारे हक में इसका इंतज़ार करते हैं कि या अल्लाह ताला अपने पास से कोई सज़ा तुम्हें दे या हमारे हाथों से। बस एक तरफ तुम मुंतज़िर रहो और दूसरी जानिब हम भी मुंतज़िर रहेंगे। कितना यकीन है इसमें, आप देखिए, आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को कि अल्लाह ताला किस तरीके से ऐसे लोगों का शऊर बेदार करते हैं कि जो मुसलमानों को बेकार कहते हैं, इस्लाम के ऊपर बातें की जाती हैं, ये है वो है, ऐसे ही बेकार लोग हैं। अल्लाह कहते हैं हमें तो दो खैरें मिलेंगी, या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरा हसना, या हम शहीद हो के अल्लाह के पास ज़िंदगी पालेंगे या फिर हम दुनिया में चलते फिरते गाजी बन जाएंगे। और याद रखिएगा कि जब दीन के नाम पे लोग आपको बातें करें तो फिर आपको अपने आप को मुतमईन करना है कि अल्लाह के दीन का ये सौदा, ये बहुत प्यारा सौदा है, इसको लेकर चलेंगे अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत डाल देगा। कह दीजिए कि तुम खुशी या ना खुशी किसी भी तरह से खर्च करो, कबूल तो हरगिज़ ना किया जाएगा, यकीनन तुम फासिक लोग हो। आप कबूल करते हैं किसी ऐसे का जिसके दिल में आपके लिए दुश्मनी हो, बुग़्ज़ हो, इनाद हो, बाहर बैठकर आपके खिलाफ बातें करें? आप तो नहीं करेंगे कबूल। शक पड़ जाए आपको कि इसने जो दिया है पता नहीं इसके अंदर कुछ डाल ही ना दिया हो, अल्लाह भी नहीं कबूल करता। नॉर्मल हालात में मुनाफी खर्च नहीं करता, जब जान के लाले पड़ जाते हैं, मसलन बीमारी आ गई बकरा दे दो, बुरा ख्वाब आ गया ये कर दो, देख पका के दे दो, जॉब चली गई, ऐसे लोग फिर उस वक्त अपना बरस छानेंगे और जो चिलर है जो उसमें चेंज है पकड़ेंगे, कहेंगे ज़रा ये डोनेशन बॉक्स नहीं अपने रखा, और उसमें एक मुट्ठी भर के कॉइन्स की डाल के जाएंगे। याद रखिए जिसको दीन प्यारा होता है वो कभी वक्त का इंतज़ार नहीं करता। औलाद बीमार हो जाए तो क्या माल संभाल संभाल कर रखते हैं माँ बाप? दीन आज बीमार है, आज की टॉप प्रायोरिटी दीन पर खर्च करना। आप देखिए कि दीन का सौदा आज बहुत सस्ता है, शेयर्स होते हैं ना, तो जब शेयर्स नहीं बिकते तो सस्ते होते हैं, और मुनाफिक आज भी इसको उठाने को तैयार नहीं, तो कहा जा रहा है कि आज उठा लो। आज दीन लोगों के पैरों तले रौंदा जा रहा है, कोई बच्चा भीड़ में दब जाए लोगों के पाँव तले आए तो क्या माँ इंतज़ार करेगी? नहीं, वो फ़ौरन उठेगी, मेहनत करेगी। इवन बच्चा अगर समंदर में डूबने के करीब जा रहा है तो माँ को तैरना आता ना आता चल पड़ती है, तो बात क्या है? आज के दौर में आपको मुझे अपने आप को चेक करने के लिए इस बात की फ़िक्र करनी है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और हम इस दीन के लिए कैसे करते हैं। इसीलिए फरमाया कोई सबब इनके खर्च की कबूलियत का ना होने का इसके सिवा नहीं कि अल्लाह और इसके रसूल के मुनकर हैं और बड़ी काखली से नमाज को आते हैं और बुरे दिल से ही खर्च करते हैं। अब्दुल्ला बिन उबई पहली सफ़ में खड़ा होता था उस नमाज में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीड करते थे, आगे आगे रहना चाहता था, लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं आप खुद देख लीजिए कि ये तुम में से है ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर आगे आगे रहने वाली चीज़ें करना चाहते हैं ताकि आपकी नज़रों में अच्छे रहें, और बात यही है कि बस आपको इनके मालो दौलत ताज्जुब में ना डालें, अल्लाह की चाहत यही है कि इससे इन्हें दुनिया की ज़िंदगी में ही सजा दे और इनके कुफर ही की हालत में इनकी जानें निकल जाएं। अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं ये तुम्हारी जमात के लोग हैं, लेकिन हालांकि वो दरअसल तुम्हारे नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि ये डरपोक लोग हैं, वमा हुम मिनकुम। आप देखिए कि नमाज़ें पढ़कर जमातों के साथ कोई अगर आप में ना शामिल हुआ तो कब होगा? क्यों नहीं है? इसलिए कि इसका दिल तुम्हारे साथ नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि इनकी वेवलेंथ आपसे नहीं मिलती, इनका माइंडसेट आपसे नहीं मिलता। वो ख्वाहिशात से मोहब्बत करता है, आप अल्लाह के दीन को ख्वाहिश बनाए बैठे हैं। इनकी प्रायोरिटीज़ और, इनका लाइफस्टाइल और, इनकी चॉइस कोई और। तो ये वो लोग हैं कि जो सिर्फ गुड टाइम फ्रेंड्स वाली कैफियत में, तो आप इनको अपनी लिस्टों में ना रखिए, क्योंकि जब कभी जंग का मौका आया, जब कभी किसी किस्म की मुश्किल आई तो ये लोग पीछे होंगे, क्योंकि वलाकिन्नहुम कौमी यफरकून। और इनकी क्या कैफियत है? लौ यजिदून मलजाउन औ मगारात, अगर ये कोई बचाव की जगह या कोई गार या कोई भी सर घुसाने की जगह पा ले तो भी इस तरफ लगाम तोड़ कर उल्टे भाग छूटें, यानी ज़रा सी इनको रिलैक्सेशन दीजिए। देखिए फिर ये सारी पाबंदियाँ उतार कर अपनी आप में आएंगे तो ये गोया के सख्तियों में ही चलने वाले लोग हैं। इनमें वो भी हैं जो खैराती माल की तकसीम में आप पर ऐब रखते हैं, अगर इन्हें इसमें से मिल जाए तो खुश हैं और अगर इसमें ना मिला तो फ़ौरन ही बिगड़ खड़े होते हैं। यानी इनको अपनी ज़ात बड़ी प्यारी है, मुझे तवज्जो दी जाए, मुझे मेंशन किया जाए, मेरी राय को फौरन सुना जाए, मेरे मशवरे को हुक्म समझा जाए। तो याद रखिए कि इस किस्म के लोग अल्लाह के नबी के पास चंद जो थे, अल्लाह ने उनके पोल यहाँ खोल दिए। अगर ये लोग अल्लाह और रसूल के दिए हुए पर खुश रहते और कह देते कि अल्लाह हमें काफ़ी है, अल्लाह हमें अपने फजल से देगा और इसका रसूल भी, तो हम अल्लाह की ज़ात से ही तवक्को रखने वाले हैं। ये है खूबसूरत चीज़। अब अगली आयत जो आ रही है इसके लिए लिख लीजिए, ज़कात की तकसीम। अक्सर लोग सवाल करते हैं ख़ास तौर पर रमज़ान में, किसको ज़कात दें किसको नहीं। तो आयत 60, इन्नमस सदक़ातुल फ़ुक़राए वल मसाकीन, सदक़े सिर्फ फ़कीरों के लिए हैं और मिस्कीनों के लिए और इनके वसूल करने वालों के लिए और इनके लिए जिनके दिल परचाए जाते हैं। ली मौल्लफ़तिल क़ुलूब, यानी जिन पे कुछ माल लगाया जाए इसलिए कि इनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो, थोड़ी सी थी अब और हो जाए, और गर्दन छुड़ाने में और कर्ज़दारों के लिए और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के लिए फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। देखिए ये अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं चीज़ें, तो लिहाजा अपने ज़कात के माल को ऐसे फेंक नहीं देना चाहिए। बाज़ लोग यकीन करें कि इस तरीके से ज़कात का माल लगाते हैं, जिधर भी चला गया फेंक दिया। पहले ये तो चेक कीजिए कि जिसको दे रहे हैं, जहाँ दे रहे हैं, वो इसका करेगा क्या। आप देखिए एक बच्चे के एडमिशन के लिए जब माँ बाप यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं, कितने चक्कर लगाते हैं, कितनी सर्च करते हैं, बार बार दूसरे मुल्कों में खुद जा जा के देखते हैं कि क्या हमारे बच्चे वहाँ सही रह भी सकेंगे कि नहीं। तो अल्लाह के माल को अल्लाह के रास्ते में देने से पहले भी इसी तरह की तहकीक करनी चाहिए। फिर कुछ और मुनाफिकाना बातें, इनमें से वो भी हैं जो पैगम्बर को ईज़ा देते हैं और कहते हैं कि ये कान का कच्चा है। ये देखिए ज़रा अल्लाह के नबी की खूबी को खामी बनाकर पेश करने वाले, आते कानों में बातें करते, अल्लाह के नबी कहते हैं हाँ हाँ चलो ठीक है, अल्लाह भला करे, कुछ नहीं, उठ के वो जाता दूसरा आता आप उसकी भी बात सुन लेते, तो बाद में ये बाहर जाके कहते लो उनको बताना क्या मुश्किल है। ये बस आपके साथ अबू बकर उमर उस्मान जैसे जो लोग हैं ना, ये बड़े सख्त हैं, वरना ये है और वो है। तो अल्लाह ने इस बात को यहाँ कितने खूबसूरत अंदाज में पेश किया, आप कह दीजिए कि वो कान तुम्हारे भले के लिए हैं, वो अल्लाह पर ईमान रखता है और ये मुसलमानों की बात का यकीन करता है, और तुम में से जो अहले ईमान हैं ये इनके लिए रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग ईज़ा देते हैं इनके लिए दुख की मार है, यानी अल्लाह के नबी तुम्हारे बारे में बुरा सोचें तो तुम्हें अच्छा लगेगा, शुक्र करो कि वो अच्छा सोचते हैं, तुम्हारे लिए रहमत है, लेकिन क्या तुम्हारी असल उन पर नहीं खुलती होगी। ये कैसे हो सकता है कि जिस बंदे को अल्लाह ने इतनी हिकमत दे दी कि वो दुनिया में आखिरी नबी की सूरत में पेश कर दिया गया, उसको तुम्हारे मामलात और तुम्हारे कामों को देख कर ना पता चले कि तुम कहते क्या और करते क्या हो, तुम्हारी जुबान में और तुम्हारे हाथों में कितना फ़र्क है। तो लिहाजा तुम उनको तकलीफ़ें ना दो वरना मुश्किल होगी। और आप देखिए कि इससे ये भी पता चलता है कि हर दौर के नबियों को रसूलों को कल के दौर में और आज भी अगर कोई खैर के काम करेगा तो कुछ ना कुछ बातें तो सुननी पड़ेंगी। क्या किया करें, शुक्र किया करें, अच्छा काम करने पे बातें सुन रहे हैं। आप देखिए कि बातें तो बातें ही होती हैं, गुलूकारों के लिए भी लोग बातें करते हैं, अदाकारों को भी करते हैं, क्रिकेटर्स को करते हैं और जितने सियासतदानों को करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि बंदा अगर गैरत ले तो फ़ौरन उतर जाए कि मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए आया हूँ, तो अल्लाह के लिए बातें सुन लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। 10 लोग करते हैं तो 20 कर लें, और महज तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खा जाते हैं, हालांकि अगर ये ईमानदार होते तो अल्लाह और इसका रसूल रजामंद करने के ज़्यादा मुस्तहक थे। यानी ईज़ा देने की बजाय उनको खुश रखो, अल्लाह को भी और उनके नबी को भी। क्या ये नहीं जानते कि जो भी अल्लाह की और उसके रसूल की मुखालफत करेगा उसके लिए यकीनन दोजख की आग है जिसमें वो हमेशा रहने वाला है, ये ज़बरदस्त रुसवाई है। देखिए इंजाम देखिए, माल देखा करे, माल नहीं माल, लिखिए एक जुमला, माल नहीं माल की फिक्र कीजिए, फ़र्क क्या है, वो माल है इस पे खड़ी जबर डाल दीजिए बस, जिसको हमारे यहाँ वो मोटी मत कहते हैं, माल इंजाम होता है। एंड आज दुनिया में जो भी वक्त है गुजर ही जाएगा ना, बड़ा अच्छा गुजर है अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी गुजर जाएगा, लेकिन अगर इस तरह की बातें करके, साजिशें करके, इधर की बातें उधर उधर की इधर करके अगर एक इंसान दुनिया का कुछ कमा ही लेता, चले माल नहीं तो शोहरत ही सही, कल आखिरत तो बुरी होगी ना। अब जब गंदे दिल के साथ कुरान सुनते थे तो होता क्या था, आयत 64 में देखिएगा, منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اتر آئے کہ جو ان کے دلوں کی باتیں ان کو بتا دے، کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر اور دبک رہے ہو۔ دیکھیے، دل میں جو ہوتا ہے نا وہی آتا ہے۔ منافقوں کے دل میں تو خرابیاں تھیں نا، تو جب قرآن کی صورتیں اترتی تو اس میں وہی برائیاں مینشن ہوتی، تو بس ہی ان کی جان پہ بنی رہتی۔ آگے مزید ان کے ایکشنز آئیں گے، دیکھیے گا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے، ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجیے، اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے۔ غزوہ تبوک میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے نام پھر بعد میں اللہ کے نبی نے بتا دیے حضرت حذیفہ کو، کہ جو جہاں موقع ملتا، یعنی سٹاپ اوور ہوتا، تو وہاں بیٹھ رہے تو باتیں شروع ہو جاتے، ہنسی مذاق ٹٹھے۔ اب رات کو جنگ تو نہیں ہوتی تھی، تو سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ واپس جاتے، تو یہ محفلیں سجاتے، ہنستے بولتے۔ اس میں کچھ ایسی باتیں بھی منہ سے نکلتی کہ جو اسلام کے اور اللہ کے نبی کے خلاف ہوتی تھی، تو اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار دی۔ جب پوچھا گیا کہیں گے وہ تو مذاق کر رہے تھے، دیکھیں نا اتنی تو ٹینشن ہے، آج کل اتنی فکر ہے، تو اگر ہم پھر کامیڈی موویز نہ دیکھیں، ڈرامے نہ دیکھیں، فلمیں نہ دیکھیں، تو پھر ہم تو بہت ڈپریس ہو جائیں گے۔ تو لکھیے ایک جملہ، اسلام فنی لگتا ہے منافق کو، مذاق کرنا اسلام کے نام پہ، دین پہ، یہ اسلام کو گرانے والی کیفیت ہے، اور غریب شخص کبھی یہ ضرورت نہیں کرتا۔ نبی کا نام آئے گا، فوراً انگوٹھے چوم لے گا، اسلام کی کوئی بات ہوگی سر پہ ٹوپی یا دوپٹہ رکھ لے گا۔ یہ انٹلیکچوئلس کا کام ہے جو بڑی بڑی اسکرینوں پہ بڑے بڑے اینکرز بن کے بعض اوقات آتے ہیں، اور وہ اسلام کے نام پہ انجوائمنٹ کرتے ہیں، اور انجوائمنٹ منافق کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے، چاہے جہنم کی قیمت پہ ہی ہو۔ تو کیا کرنا اس ہنسنے کو جو بات میں رونے کا ذریعہ بنے؟ اگر آپ ان سے پوچھیں، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آپ پوچھیے، لیکن وہی بات ہے کہ جو اصل تھی وہ تو سامنے آ گئی، اب کیا ہوا، بہانے بازیاں شروع ہو گئیں۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں، تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ اوور لک کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، اگنور گریس فلی کا بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے، کب تک آخر تمہاری ان حرکتوں پہ اللہ کا نبی خاموش رہے گا؟ تمام منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں۔ اب یہاں سے آپ کو ایک اور پیکج مل رہا ہے، جو پیچھے سورہ بقرہ میں ایک ہم نے دیکھا، ڈیٹیل سے ساری بات ہوئی تھی، پھر سورہ نساء میں پانچویں پارے کے آخر میں دیکھا، اور اب یہاں بھی دکھ رہا ہے، تمام منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں، یعنی لائک مائنڈیڈ پیپل لیو ٹوگیدر، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، اس سے اپوزٹ ہے جو امت مسلمہ کو کہا گیا، وہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں، اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ یہ مٹھی نہیں کھلتی، منافق کی مٹھی کھلوانے کے لیے پھر یا تو اس کو کسی بیماری میں، پریشانی میں ڈالنا پڑتا ہے، یا کوئی برا خواب دکھانا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا، بے شک منافق کی فاسق کو بد کردار ہیں۔ پیسے سے بہت پیار ہوتا ہے، تو انجام سن لیجئے، اللہ تعالیٰ ایسے منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے، جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہی نے کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ جہاں جنگوں کا ذکر آئے گا وہاں منافقت کا ذکر آئے گا، پورے قرآن کے لیے یہ اصول یاد رکھیے، یہاں بالکل وہی ہے۔ تو دیکھیے گا ذرا، منافق کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ کراہیت الموت، اور اس کے پیچھے روٹ کاز کیا ہے؟ حب دنیا۔ جہاد میں مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے، منافق ہجرت، جہاد اور قربانی نہیں دینا چاہتا، ان سب سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، امر بالمنکر اور نہیں عن المعروف کرتا ہے، مسلمانوں میں فتنے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ کرے۔ مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، تم سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال اور اولاد والے تھے، بس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، یعنی دنیا میں جو ان کو ملنا تھا مل گیا، پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا، یعنی یوز کر لیا، جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح مذاکانہ بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ سوچیے، جو لوگ چلے گئے، نانیاں چلی گئیں، دادیاں چلی گئیں، آج کدھر ہیں؟ سب چلے گئے، اور ایسے لوگ واقعی حقیقت میں پھر اس دنیا سے کچھ زیادہ اچھا لے کر نہیں جاتے۔ آپ دیکھیں، دو لوگ جاتے ہیں ایک ہی بازار میں، کچھ تو بالکل بیکار، فضول، کھٹیا چیزیں ڈھیر ساری خرید لاتے ہیں، اور کچھ بہت ڈیسنٹ قسم کی ایک دو چیز خرید کر لے آتے ہیں۔ मोमिन और मुनाफिक का यही फ़र्क है, दोनों को अल्लाह के नबी के करीब आने का मौका मिला, दोनों को अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए चुना, इस्लाम के साथ चले, तबूक तक ले गए उनको, लेकिन कुछ वहाँ से पुरानी चीज़ें, बेकार टूटी फूटी चीज़ें, जंक उठा कर ले आए, लेकिन कुछ खैर लेकर आते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोग अल्लाह को भूल गए। जब अल्लाह का काम करते हुए अल्लाह को बंदा भूल सकता है, जब नमाज़ पढ़ते हुए अल्लाह ना याद आए, तो मुझे बताइए क्या सिनेमा घर में अल्लाह याद आएगा? तो अल्लाह ताला हमेशा आपको इस चीज़ की दावत देता है कि इस्लाम के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कीजिए। मुनाफिक सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं चाहता इस्लाम के लिए, और ऐसे लोग फिर बुराई को प्रमोट करेंगे। और आप देखिए, औरतों का जिक्र अलग है, यानी मिस्टर एंड मिसेस वाला अंदाज़ है, क्योंकि जब औरतें ठान लेती हैं ना, तो फिर वो काम हो ही जाता है। और इसी तरह से आप देखें कि पिछली कौमों का भी यहाँ नाम लिया जा रहा है, क्या इन्हें अपने से पहले के लोगों की खबरें नहीं पहुँची? कौम नूह और आद और समूद और कौम इब्राहिम और अहले मदियन और बस्तियाँ उल्टी की गईं, मुराद कौम लूत की बस्तियाँ, अहले मोतफिकात। इनके पास इनके पैगंबर दलीलें लेकर पहुँचे, अल्लाह ऐसा न था कि इन पर जुल्म करे, बल्कि इन्होंने खुद अपने ऊपर ही जुल्म किया। आप मोमिन मर्दों की खूबसूरत बातें और औरतों की भी, मोमिन मर्द और औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार और मुआविन और दोस्त हैं। वो भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाजों की पाबंदी बजा लाते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह की और इसके रसूल की बात मानते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला बहुत जल्द रहम फरमाएगा। बेशक अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। मोमिन गूंगा शैतान नहीं होता, बुराइयां देखकर चुप नहीं रह सकता कि क्यों बुरा बनूं और अपना मामला समेटो, और खामखा रिश्तेदारी की बात है और ये, और वो उस महफिल में भी नहीं जाके बैठता कि वहां जाके तबलीग करूं, बल्कि वो पहले से ही बात करता है। फिर आप देखिए कि या मुरूना बिल मारूफ की बात हुई ना, मारूफ क्या चीज़ है? उर्फ से जान पहचान वाली, जो चीज़ बहुत कॉमन हो, मुराद यहाँ शरीयत है, जो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज गैर मारूफ हो गई। अल्लाह के नबी ने ये खबर पहले से दी थी कि दीन अजनबियत से शुरू हुआ था और क़यामत के करीब फिर अजनबी होगा, लेकिन फतूबा लिलगुरबा, ऐसे अजनबियों के लिए खुशखबरियां हैं। आज सच्चा दीन पेश करने वाला लोगों को एक्सट्रीमिस्ट और बातिल परस्त और पता नहीं क्या क्या लगता है, और जो बड़ा मिला जुला मिक्सड एंड मैच फ्रूट चाट वाला दीन, मीठा खट्टा कड़वा पेश करे, कहते ये बहुत अच्छी बात करते, इनकी बातें सुनो, ना तकवा ना ईमान ना कुछ। तो ज़रूरत है इस बात की कि ऐसे लोग फिर अपने आप को कल क़यामत के दिन कहाँ लाना चाहते हैं। दुनिया में थोड़ा सा काम और करने की ज़रूरत है। देखिए, अल्लाह ने मसा की ना तय्यबा की जो बात की है, देखिएगा, इन ईमानदार मर्दों और औरतों से अल्लाह ने इन जन्नतों का वादा किया जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहाँ वो हमेशा रहने वाले हैं, और इन साफ सुथरे पाकीज़ा महल्लात का जो इन हमेशगी वाली जन्नतों में हैं। और अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी चीज़ है, यही ज़बरदस्त कामयाबी है। व रिदवानु मिन अल्लाह ही अकबर, बिल्कुल ऐसे ही सूरत आले इमरान में हम पढ़ चुके। दुआ कीजिए अल्लाह हमें अपनी रजामंदी दे दे, रब राजी तो जग राजी। अगर रब को राजी ना कर सके, सारी दुनिया आपके कसीदे पढ़े, आपके गुण गाए, लेकिन क़यामत के दिन आपकी मेरी ज़रा भी औकात नहीं, तो आपकी मेरी लाइक्स इधर नहीं उधर हो जाए और एक हस्ती आपको मुझे लाइक कर ले, तो दुनिया के लाखों लाइक से बेहतर है, और एक क्लिक वहाँ मिल गया तो यहाँ के हज़ारों लाखों क्लिक से बेहतर है। असल मकसद है जिसके ऊपर अल्लाह ने आपको मुझे जोड़ना है, और वो कह के रिदवान मिन अल्लाह ही अकबर। ज़रा सी मेहनत आज और कर लीजिए, देखिए घर जन्नत का और बड़ा हो जाएगा। वहाँ जाकर इंसान को सिर्फ अफसोस होगा तो उन लम्हों पे जो अल्लाह की याद और उसके जिक्र से अलग होकर गुजर गए, क्योंकि इंसान दुनिया में मेहनत करता है, थोड़ी सी थक जाता है, कभी कभी अपनी जन्नत को भी विजुअलाइज किया करें, कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, विला होगा, अपार्टमेंट होगा, महल होगा, कैसल होगा। आप कहेंगे हमें तो कैसल ही चाहिए, हम क्यों रहे हैं फ्लैट्स में और ये वो, तो थोड़ी सी और मेहनत कीजिए। क्या पता मेरी मेहनत सिर्फ अभी जन्नत के एक छोटे से फ्लैट की है, तो क्या आप वहाँ अपनी दोस्तों के बड़े बड़े घरों को देख कर घुड़ना चाहेंगी? होगा तो नहीं ऐसा? सिर्फ अपने आप को समझाने के लिए ये बात कहिए कि मैंने इंशाल्लाह और मेहनत करनी है, इस रमज़ान ने तो मेरे अंदर एक एनर्जी भर दी है, मैं क्यों करूं, मैं किसी की बात से क्यों पीछे हटूं। बाज़ दफ़ा आप देखिए, इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, ज़र्रा सी किसी से कोई बात हुई छोड़ के बैठ गया, मैंने नहीं करना, तो आपका जन्नत का घर छोटा रह जाएगा, जैसे आप बच्चों को नहीं बहलाते। अच्छा ठीक है, फिर आप छोटे रह जाएंगे, आपका फिर कद नहीं बढ़ेगा, और दिस एंड दैट। तो कभी बच्चे बनकर अपने आप को जन्नत के लालच दीजिए। इसके बाद की आयत बहुत मुश्किल लगती है लोगों को सुननी सुनानी और पढ़नी, लेकिन हम पढ़ेंगे पूरे शौक़ और मोहब्बत से। يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ. اے نبی، کافر اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ. ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے اور وہ انتہائی بدترین جگہ. دیکھیے، منافق کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کافر کے ساتھ کھڑا کر دیا، ایک صف میں کھڑا کر دیا. نفاق کتنا برا مرض ہے. اور دوسری بات ہے کہ سختی کے اصولوں کی سختی رکھیے، ان کے ساتھ معاملہ اپنوں والا نہ رکھیے. اور بات سچ ہے، جگہ آخر میں دوزخ ہے ان کی، جو کہ بدترین جگہ ہے. یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے. یہ بھی خاص واقعہ تھا جو تبوک کے سفر سے واپسی پہ ہوا تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے. بعد میں مکر جاتے ہیں، نہیں ہم نے تو یہ بات کی نہیں، تو اسی کی طرف اشارہ ہے. اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے. توہین رسالت کا کوئی جملہ انسان کو اسلام سے نکال سکتا ہے، اس لیے سوچ کے بولا کریں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت بے تکلفی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے. وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ نے عین وقت پر اپنے نبی کو بچا لیا، اسی کی طرف اشارہ. یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں، یعنی ان کو اللہ کے نبی سے چھڑکے. کیا آپ کا اخلاق برا؟ کیا آپ کے معاملات برے؟ نہیں، چڑ یہ ہے، یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا. یعنی یہ مال بولتا ہے، تکبر بولتا ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، یہ بڑائی بولتی ہے. لیکن کوئی بات نہیں، اگر اب بھی یہ توبہ کر لیں. دیکھیے سورۃ توبہ میں کتنوں کی توبہ کا موقع اللہ نے رکھا ہوا ہے. اللہ کرے میں اور آپ اس کو پڑھتے پڑھتے ہی اپنی ہر برائی سے توبہ کر چکے ہوں. اب بھی یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا. تو کیا سیکھا ہے 61 سے 74 تک؟ منافقین کی گستاخیاں. منافقین مرد و عورت نیکی سے روکتے اور برائی پھیلاتے، تاریخ سے عبرت لینے کا سبق ملا. اور مومن مرد اور عورتیں نیکی پھیلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور منافقین اور کفار کے خلاف جہاد کا حکم ہے. اب یہاں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہے، ایک سمبل سمجھ لیجئے، کہ جو یہ کہتا ہے ابھی نہیں دے سکتا، گزارا ہی نہیں ہوتا، بچوں کے لیے نہیں ہے، ذرا اللہ اور دے دے، اور دے دے. پھر جب اللہ تعالیٰ اور دے دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے گا آیت 75 سے، اور ساتھ ہی دعا کرتے رہیں کہ میں اور آپ اس میں نہ ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِ، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور آپ کی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا. یاد رکھیے، تھوڑے مال میں سے دینا آسان ہے، زیادہ میں سے دینا بہت مشکل ہے. پہلے تو آپ کا چند سو میں گزارا ہو جاتا تھا، پھر ہزاروں میں ڈھلا، اور لاکھوں اور کروڑوں میں ڈھلے. آپ تو ہر وقت قرضوں میں ہیں، بینکوں کے ہیں یا کمپنیز کے ہیں، بعض زکوٰۃ دینے تک کے پیسے نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بندہ اللہ سے وعدے کرے پھر اس کے بعد اسی کے خلاف رکھے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی سزا آتی ہے، اللہ کی پکڑ ہوتی ہے ایسے لوگوں پر. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ ڈرو اس کے شر سے جس نے تم پر احسان کیا ہو. اللہ کی نعمتوں کو اس کے خلاف جب بندہ استعمال کرے تو واقعی پھر اللہ تعالیٰ بھی بندے کو اس کے اوپر پکڑنے لگتا ہے. اور یاد رکھیے، تبوک کے موقع پر جس طرح جہاد فرض تھا نا، اسی طرح صدقہ بھی فرض تھا. کیونکہ سفر بہت لمبا تھا اور بہت زیادہ پیسے کی بھی ضرورت تھی، اور ہر دور میں دین کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو لوگوں نے کیا، زیادہ دینے والوں کا بھی مذاق، تھوڑا دینے والوں کا بھی مذاق، اچھا مٹھی بھر کھجوروں سے یہ روم کو فتح کرنے چلے ہیں. اور جو زیادہ لاتے تھے، مثلاً حضرت عثمان غنی جیسے، عبد الرحمن بن عوف جیسے، کہتے دکھاوا کرتے ہیں، شو مارتے ہیں، سب کے بیچ میں اتنا دے دیتے ہیں، پھر ہمیں تو دینا ہی نہیں اچھا لگتا. آج بھی لوگ دین کے نام پہ مذاق کرتے ہیں، یہ کھانے پینے کے بہانے. یہ ماڈرن عورتوں نے ترسوں کا فیشن شروع کر دیا ہے، یہ قرآن پڑھنا، یہ پڑھانا، اور یہ کوئی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی کہانی کھولتے ہیں کہ جب بندہ ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں منہ سے نکالے اور ایسی گفتگویں کریں تو اللہ تعالیٰ دلوں میں نفاق کو اور بڑھا دیتے ہیں. بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. 3 سیکنڈ تک سوچئے، میں نے تو نہیں کوئی اللہ سے وعدہ کیا ہوا، کوئی اچھے کام کی نیت کی ہوئی اور پھر بھول گئی؟ تو فوراً اس پہ عمل کر لیجئے. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے؟ जो लोग इन मुसलमानों पर तानाजनी करते हैं, जो दिल खोल कर खैरात करते हैं, हाँ जी ये तो बातों में आ जाते हैं, बस हर जगह इनको ही देना होता है ये बात, और इन लोगों पर जिन्हें सिवाय अपनी मेहनतों मजदूरी के और कुछ मयस्सर ही नहीं। अकील नामी सहाबी, जब तबुक की कॉल आई तो कहा मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी, गए सारी रात एक यहूदी का कुआं खींचते रहे और उसको पानी देते रहे, और हर एक डोल के बदले एक खजूर, सुबह तक मुट्ठी भर खजूरें लेकर आपके पास आए। उस पे ये जुमले कसे थे लोगों ने, हालांकि अल्लाह के नबी ने उनकी वो खजूरें पूरे ढेर पे फैला दी। आप बहुत कदरदान थे, अपने साथियों की छोटी छोटी मेहनतों की बड़ी कदर करते थे, तो याद रखिए आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं, ये देखिए कि आप बहुत अच्छे दिल के साथ कर रहे हैं। तो लोगों ने मजाक किया, अल्लाह के नबी ने उसी बात की कदर की। बस इनका मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह भी इनसे तमस्खुर करता है, और इन्हीं के लिए दर्दनाक अजाब है। इनके लिए आप इस्तगफार करें या ना करें, अगर आप 70 मरतबा भी इनके लिए इस्तगफार करेंगे तो भी अल्लाह ताला इन्हें हरगिज़ न बख्शेगा। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल से कुफ्र किया। ऐसे फासिक लोगों को रब्बे करीम हिदायत नहीं देता, यानी मुनाफिक अल्लाह के नबी की दुआओं से भी नहीं बख्शा जाएगा। पीछे रह जाने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अपने बैठे रहने पर खुश हैं, देखिए कितने मौजें कर रहे हैं, वो तो गए उधर मैदान जंग में खप रहे हैं तप रहे हैं, और ये घर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। लाओ भाई मूंगफली लेकर आओ, अच्छा क्या कोई चाट शाट नहीं बनाई, कोई आइसक्रीम है, यानी पीछे बैठ कर घर बैठ कर खा पी के मोटे ताज़े हो गए। इन्होंने कहा अल्लाह के नबी के उस मिशन के राही बनना था, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि रोना चाहिए था कि हम नेकी के काम से पीछे रह गए, लेकिन इनके हालात तो इससे बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए, और बहाना क्या था, गर्मी का। पूरी आयत सुनते हैं। पीछे रहने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अपने बैठ रहने पर खुश हैं। उन्होंने अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करना नापसंद किया। उन्होंने कह दिया कि इस गर्मी में मत निकलो, कह दीजिए दोजख की आग बहुत ही सख्त गर्म है, काश के वो समझते। जी आज गर्मी की वजह से घर बैठ जाएंगे, कल क्या बनेगा, जहन्नुम की आग इस दुनिया से 69 टाइम ज़्यादा गर्म है, 70वां हिस्सा ये जहन्नुम की आग का। दुनिया की आग अगर ठंडी करके ना भेजी जाती तो हो सकता है कि इससे कोई फ़ायदा ही ना उठा पाता। ये ऐसे लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला यहाँ ये बातें बताकर यकीन दिलाते हैं कि तुम अपनी फ़िक्र करो। आप देखिए कि दुनिया में आप कोई भी उज़र रख लें, दुनिया में कोई क्या कहेगा, आपको क्या कहेगा या मुझे क्या कहेगा, लेकिन कल जाकर वहाँ भुगतना तो खुद है। अल्लाह तो आपके पसीने के कतरे भी संभाल के रखता है। आज ट्रेडमिल पे खड़े होके पसीना बहाते हो, अल्लाह कहता है लोगों को जहन्नुम से बचाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दो, उस रास्ते में जान माल वक्त खप गया तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी, और इसको छोटा ना समझिए। अगर आपके किसी काम की वजह से आपको जन्नत मिल जाए और क्या चाहिए, काश के वो समझते होते। सही बुखारी की रिवायत है 3265। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी दुनिया की आग जहन्नम की आग के मुकाबले में अपनी गर्मी और हलाकत खेजी में 70वां हिस्सा है। किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल कुफार और गुनाहगारों के अजाब के लिए ये हमारी दुनिया की आग भी बहुत थी, यानी यही बहुत थी। आपने फरमाया दुनिया की आग के मुकाबले में जहन्नम की आग 69 यानी 69 टाइम बढ़कर है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो जब इतना कुछ है तो फिर क्या हुक्म है, फल यदहकु कलीलम वल यबकु कसीरन जजाम बीमा कानू यकसिबून। बस इन्हें चाहिए कि बहुत कम हंसे और बहुत ज्यादा रोएं बदले में इसके जो ये करते हैं। और आज हमारा तो हंसने हंसाने का कल्चर है, फन, चलो ये चलो ये देखते हैं उधर चलते हैं। याद रखिए आज हमने अपनी जनरेशन को इतना आदी कर दिया फन एंड फ्रॉलिक का कि वो हर वक्त कहते हैं हम बोर हो रहे हैं, हालांकि अमाल को देखें तो रोएं। बस अगर अल्लाह ताला आपको इनकी किसी जमात की तरफ लौटा कर वापस ले आए, फिर ये आपसे मैदान जंग में निकलने की इजाज़त तलब करें, तो आप कह दीजिए कि तुम मेरे साथ हरगिज़ चल नहीं सकते। जी एक मौका था आपने मिस कर दिया, इंशाल्लाह जब कभी जगह बनी तो आपको दोबारा मौका देंगे। आज से मेरे समेत आप में से हर एक जो कहीं किसी जगह भी दीन के किसी प्लेटफॉर्म पे दीन के लिए कुछ कर रहे हैं, आप उसको वॉलंटियर कहें, आप उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, कभी अपनी जगह ना छोड़िएगा। आप रूठे हम छूटे। जहाँ चाह नहीं वहाँ राह नहीं, जगह खाली नहीं रहती। कायनात का असूल है देखिए कि कोई भी जगह खाली नहीं होती, हम जिसको खाली कहते हैं वहाँ भी हवा होती है। कभी आपका दांत टूटा हो, आप थोड़ी दिन दांत वहाँ ना लगवाएं तो आपको पता क्या होता है, इर्द गिर्द के मसूड़े फूल कर उस जगह को भरने लगते हैं। तो बात यही है, एक दफ़ा इंसान एग्ज़िट ले ले फिर वापस आना बहुत मुश्किल होता है। इसी को घरों पे भी रखिए, जहाँ जैसे हालात में बैठी रहिए कुछ नहीं होगा। करोड़ों लाखों से आप अच्छे हालात में बैठे हुए हैं, ना इतनी ना शुक्री करें आप। वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है, कभी कभी यू टर्न लेने के लिए 70-80 मील दूर जाकर आना पड़ता है। जो अमेरिका में रहते हैं वो जानते हैं इस बात को, तो इसीलिए कह दिया कि इनको बता दो, अब मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मुश्किल था, मुश्किल में मुनाफिक आता नहीं है, क्योंकि मुनाफिक को तो ये पसंद ही नहीं होता कि मैं किसी मुश्किल में दीन के काम आऊँ। उनको यकीन था कि ना किसी ने पलट कर आना, ना कोई जाना, ये सब मरखप जाएंगे। बल्कि जो बातें नोट हैं आज भी किताबों में, आपको भी पढ़े तो यकीन करें कि खून खौलने लगता है इनकी बातों को सुनकर। ऐसी बातें करते थे, जरा देखो तो सही किधर गए आए नहीं है, कोई खबर आई। जैसे आज लोग टीवी लगाकर खबरें चेक करते हैं, जरा देखो कोरोना किधर है, उधर कितने मर गए, उधर जी गए, इस तरह ये जंगों की खबरें लिया करते थे। हंसी तो बंद नहीं होती थी, और ऐसे लोग किस तरीके से अपने आप को हंस बोलकर मुश्किल में डाल देते थे। तो फरमाया कि बस इनको अपनी फिक्र करने की ज़रूरत है। तो कह दीजिए कि तुम मेरे साथ हरगिज़ चल नहीं सकते, और ना मेरे साथ तुम दुश्मनों से लड़ाई कर सकते हो। तुमने पहली मर्तबा ही बैठ रहने को पसंद किया था, बस तुम पीछे रह जाने वालों में ही बैठे रहो। तो कुछ नेकियां वन टाइम होती हैं, अपॉर्चुनिटीज डजंट नॉक ट्वाइस, मौके बार बार दस्तक नहीं देते। अब्दुल्ला बिन उबई का इंतकाल गज़वे बदर से वापसी पे फौरन हुआ, और मैं जब भी ये जुमला बोलती या सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ कि कभी उसको ये पता होता ना कि मेरी मौत इतनी करीब है तो तौबा कर लेता और तबूक में खप जाता, वहाँ भी मरना था इधर भी मरना था। लेकिन देखिएगा क्या हुआ उसके साथ, इनमें से कोई मर जाए तो आप इसके जनाजे की हरगिज़ नमाज ना पढ़ें और ना इसकी कब्र पर खड़े हों। ये अल्लाह और उसके रसूल के मुनकर हैं और मरते दम तक बदकार और बेइताअत रहे हैं। आपको इनके माल और औलाद कुछ भी भले न लगें, अल्लाह की चाहत यही है कि इन्हें इन्हीं चीज़ों के साथ दुनिया की सजा दें और ये अपनी जानें निकलने तक काफिर ही रहें। अल्लाह अकबर, यानी कुफार को अपनी औलादें और माल भी फ़ायदा ना दे सके। जिन चीज़ों के पीछे लगकर अल्लाह को राज़ी ना किया, नाराज़ किया, वही चीज़ें इनके लिए तकलीफ़ का ज़रिया बनी। अल्लाह के नबी के पास उस वक़्त आप देखिए जो हो सकता था आपने किया। बदर में जो अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को कुर्ता पहनाया गया था अब्दुल्ला बिन उबई का, उसके बदले में आपने इसके बेटे की फरमाइश पे अपना कुर्ता उतार कर दिया, अपना थूक लगाया, आपने खुद इसको कब्र में डाला, लेकिन ना नबी का कुर्ता बचा सका। तो आज हमें जमजम में भीगे हुए कफन कैसे बचाएंगे? दुआ कीजिए कि निफाक के साथ कब्र में ना चले जाएं, वरना वो कब्र ही जहन्नुम बन जाएगी। और अल्लाह ताला ने जिसको जो देना है उसके मुताबिक ही फिर उससे तलब भी करना है। तो आयत 75 से 85 में हमने क्या देखा, अल्लाह ताला वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, और अगर कोई इंसान अल्लाह ताला से वादा खिलाफी करता है तो उसकी सज़ा उसको ये मिलती है कि उसके दिल में मुनाफ़कत भर जाती है। बड़े गौर से सुनिएगा जुमला, अल्लाह से वादे कर कर के तोड़ना दिल में निफाक भरता है। मुनाफिकीन के लिए आपकी दुआ इस्तग़फ़ार तक कबूल ना होगी। जहन्नुम की आग दुनिया की आग से ज़्यादा शदीद है। मुनाफिकीन की महरूमियाँ और मुनाफिकीन के लिए इनका माल बायसे अजियत होगा। निफाक सबसे बड़ा वायरस है, इससे डरने की और इससे बचने की जो मुमकिन दवा हो वो कर लीजिए, वरना बहुत ही हसरत होगी। वैज़ा उन्ज़िलत सूरत नामिनु बिल्लाहि वजाहिदु मा रसूलिही, जब कोई सूरत उतारी जाती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और इसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो इनमें से दौलतमंदों का एक तबका आपके पास आकर ये कहकर रुख्सत ले लेता है कि हमें तो बैठ रहने वालों में ही छोड़ दीजिए, यानी हम बड़े मसरूफ लोग हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, बस दुआ किया करें। बस ये जो जुमे में आ जाते हैं यही बड़ी बात है, और मौलवी साहब की मुट्ठी में कोई 10-50 हज़ार डाल दिया कि ये ज़रा मस्जिद में कालीन तो डाल दें, ऐसे लोगों का जिक्र है। रुख्सतें लेने वाले अमूमन दौलतमंद और साहिब नेमत होते हैं, और मजबूरियों वाले पेट पे पत्थर बांध के, पाँव में पट्टियाँ बांध के, और इसी तरह से अपने आप को जगा जगा के दीन के लिए काम करने वाले हो जाते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह मुनाफ़क़त से पाक कर दे। एक जुमला स्टूडेंट्स ने तो बीसियों बार सुना हुआ, शायद कोई बाहर से सुन रहा है तो उसको भी फ़ायदा हो जाए। बाज़ दफ़ा मजबूरियों के नाम पर हमारी मुनाफ़क़त छुप जाती है। बस हम समझते हैं मजबूर है, मतलब किसी का शौहर मना कर देता है आपने ये काम नहीं करना, किसी की बीवी बच्चे उसको रोक लेते हैं, किसी की सास कह देती हैं, और आप फिर रोते हैं धोते हैं क्या करूं, बड़ा कुछ करने को दिल करता है, लेकिन फिर एक वक्त आता है वो मजबूरी टल जाती है, फिर भी नहीं आप करते। पता क्या चला, वो एक ढकोसला था, वो सिर्फ एक बहाना था, लेकिन आपकी इज्जत रह गई, आपका पर्दा रह गया, अल्लाह न करे दिल में कहीं खोट हो और ऐसा ही होने लगे। ये तो खाना नशीन औरतों का साथ देने पर रीझ गए हैं और इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है। सजाएं तो सुनिए कितनी बड़ी बड़ी, अब वो कुछ समझ अकल नहीं रखते। इनका अपना फैसला था, दे चूज इट, इसलिए इस पे कोई अफसोस भी नहीं है। लेकिन इसके बरक्स लाकिन रसूल वल्लज़ीना माहू, लेकिन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथ के ईमान वाले अपने मालों और जानों से जिहाद करते हैं, वो नहीं छोड़ते, वो नहीं पीछे होते, क्योंकि उनको पता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं। यही लोग भलाइयों वाले हैं और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। इन्हीं के लिए अल्लाह ने वो जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। अदल्लाहु लहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अलअन्हारु खालिदीन फीहा, और जिनमें वो हमेशा रहने वाले हैं, और ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी। क्या वो दिन होगा जिस दिन जन्नत में पांव लगेंगे। आप और मैं हर वक्त खतरे में, दुआ किया करें कि अल्लाह हिदायत के बाद गुमराह ना करना। अगर आज बज़ाहर कोई अच्छा काम कर भी रहे हैं तो अल्लाह मरते दम तक यही करवाना, क्योंकि इंजाम अच्छा ना हुआ तो पिछली नेकियां भी ज़ाया हो जाएंगी। नासरुद्दीन अल्बानी की किताब में जो रिवायत है अबू दाऊद से है बेसिकली, लेकिन नासरुद्दीन अल्बानी साहब ने उसको सही कहा, 2203, और अब्दुल्ला बिन अमर से रिवायत पहुंचती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद के लिए निकलने वाले को अपने जिहाद का सवाब मिलेगा और जिहाद पर किसी को खर्च देकर भेजने वाले को खर्च देने का भी सवाब मिलेगा और इस भेजे गए शख्स के जिहाद का भी सवाब मिलेगा। तो नेकियों में हिस्से डालिए, मन दाला अलल खैरी कफाइलिही। तो बहुत कुछ इस बारे में हमने जो देखा, आज जिहाद से रुकने की वजह कराहियतुल मौत है। इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? पहली बात है अफजल तरीन अमल बाद ईमान, ईमान लाने के बाद सबसे ऊपर का जो मामला है ना वो जिहाद का, अल्लाह की मदद और ताइद को हासिल करने का मामला, बेपनाह सवाब और बुलंद दरजात का जरिया। या गाजी बनकर निकलेंगे आप या शहीद हो जाएंगे और दीन इस्लाम की अजमत और उम्मत को उरूज दे जाएंगे। वो कहते हैं ना कि शहीद अपनी शहादत से इस्लाम को खड़ा कर जाता है, कि मैं तो पीछे होता हूँ, मैं अपनी जान देता हूँ, लेकिन इस्लाम के पौधे में बहार आ जाए। फिर जरा जन्नत वाजिब और दोजख से निजात का जरिया है और खुशी और सुकून कल। आज हमारी डिक्शनरियों में तो ये बातें ही नहीं है। हमने गैरों के प्रोपेगंडे और ज़ुख़रुफ़ुल क़ौली गरूरा से डर कर अपने बेटों से ये लफ्ज़ डिस्कस करना छोड़ दिया और समझते हैं कि शायद जिहाद का मतलब किताल ही और जाकर गन पॉइंट पे लोगों को मारना। तो याद रखिए इसके स्टेप्स हैं। अल्लाह ताला हमें सही मानों में इस मौजू को भी समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। अब यहाँ से गज़वे तबूक से वापसी का खुतबा शुरू होता है, जो अगले पारे में डिटेल से आ रहा है, कि जब वापस आए तो अब जो लोग गए जो नहीं साथ, तो अब सामना तो होना था, अगली नमाज में मिल पड़ना था सबने मस्जिद नबी में, तो अब उनके साथ क्या मामला कैसे, इसको ज़रा जहन में रख कर सुनिएगा। पारे की आखिरी आयतें हैं, वजाल मुअज़्ज़िरून, बादिया नशीनों में से उजर वाले लोग हाजिर हुए कि इन्हें रुख्सत दे दी जाए और वो बैठ रहे जिन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल से झूठी बातें बनाई थी। अब तो इनमें जितने कुफार हैं इन्हें दुख देने वाली मार पहुंच कर रहेगी, यानी बदुओं वगैरह ने आकर ऐसा कहा कि जी हम ये ना कर सके वो नहीं, जाने के वक्त भी ये बातें थी, वापस आए तो भी यही होंगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं इनसे ओवरलुक कीजिए, ज़ईफ़ों पर और बीमारों पर और इन पर जिनके पास खर्च करने को कुछ भी नहीं, कोई खर्च नहीं, बशर्ते कि वो अल्लाह और उसके रसूल की खैर ख्वाही करते रहें, ऐसे नेक कारों पर इल्ज़ाम की कोई राह नहीं। अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़रत और रहमत वाला, क्योंकि इतना ये टॉपिक सुना तो खौफ आने लगता, हम भी तो नहीं मुनाफिक। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर आपके उज़र सच्चे हैं, आप वाकई ज़ईफ़ हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं, जैसे आप देखिए कि अमर बिन जमुख थे और इसी तरह के अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नबीना सहाबी थे, ये बीमारियों में और लंगड़ा कर चलते थे, कहते थे मैं जंग में ले जाए, क्यों कहा मैं जन्नत में लंगड़ा के जाना चाहता हूँ। अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम कहते थे, मुझे ले जाइए, मैं इस्लाम का झंडा पकड़ के खड़ा रहूंगा, यकीन करें मैं झंडा गिरने नहीं दूंगा। ये हैं वो जज्बे जो काम करवाते हैं, अल्लाह ताला आपके मेरे अंदर ये जज्बे भर दे कि फायदा जो मेरा है। आप बिल्कुल देखिए ना, कहीं कुछ चीज़ बट रही हो कि ये 100 वाली चीज़ जो है आपको 10 की है, तो भाग के लेंगे ना। तो नेकियां भी इसी तरह अपने लिए भाग के लेने वाली चीज़ है, क्योंकि इनके शेयर आजकल सस्ते हैं। आजकल वाकई नेकी पे सेल लगी हुई है, आप घर बैठ कर नेकी कर लें, बाहर जाकर नहीं करते। लेकिन जो घर में बैठ के ना करे, फिर बाहर जाकर वो कैसे करेगा, इल्ला माशाल्लाह। अब वो लोग जिन पे कोई हरज नहीं, उनकी एक और किस्म जो बहुत ही इमोशनल सी फीलिंग्स देती हैं पारे के एंड पे हम सबको, वलाल्लज़ीना इज़ा मा आतौक, हाँ इन पर भी कोई हरज नहीं, जो आपके पास आते हैं कि आप इन्हें सवारी मुहैया कर दें, तो आप जवाब देते हैं कि मैं तो तुम्हारी सवारी के लिए कुछ भी नहीं पाता, राइट प्रॉब्लम, घोड़े नहीं, ऊँट नहीं, सफ़र इतनी दूर का। तो वरन जो गम से अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए लौट जाते हैं कि इन्हें खर्च करने के लिए कुछ भी मुयस्सर नहीं। कभी आप और मैं खुद भी पूछें, कभी आपसे मुझे नेकी का कोई मौका छूट जाए तो हम भी रोते हैं। कब आखिरी बार रोई थी? कोई ये तो नहीं कि रो रो के नेकियां करती हूँ। तो फिर इल्ज़ाम किस पे है? बेशक इन लोगों पर तो राह इल्ज़ाम है, और इन्हीं पर जो बावजूद दौलतमंद होने के आपसे इजाज़त तलब करते हैं, यानी वक्त की दौलत इनके पास, माल की दौलत इनके पास, सेहत की दौलत इनके पास, अक्ल फहम की दौलत इनके पास, इंटेलेक्चुअल ये हैं, स्किल्ड ये हैं, फिर भी मौजें कर रहे हैं घर में, हमें छुट्टी चाहिए, हमें एक फेरिए चाहिए, हमें ज़रा कुछ साल छोड़ दें, बच्चे बड़े होंगे फिर हम आएंगे। ये बातें कहने वाले फरमाए ये खाना नशीन यानी घरों में बैठने वाली औरतों का साथ देने पर खुश हैं, और इनके दिलों पर मोहरे खुदाबंदी लग चुकी है। और वजह क्या है, देखिए ज़रा पारे का शुरू और आखिर कैसा मैच करता है। वतब अल्लाहु अला कुलूबिहिम फहुम ला यालमून, इनके दिलों पर अल्लाह की मोहर लग चुकी है जिससे वो महज बेइल्म हो गए। पारे का शुरू था वालमू, इल्म लो, और एंड पे ला यालमून, और बीच में मुनाफिकों के किस्से हैं और सच्चे मोमिनों की बातें हैं। तो इल्म के मौके तो बहुत मिलते हैं, हर एक उससे फ़ायदा नहीं उठाता। तो ये था पारा नंबर 10 वालमू। अहकामे जिहाद से मुतल्लिक जो सूरह तौबा में चीज़ें देखी, ज़रा उसको आयतों के साथ दोहरा लेते हैं। 1-23 आयात में मुशरिकीन अरब के ख़िलाफ़ जिहाद का हुक्म था, 29-35 अहले किताब के ख़िलाफ़ जिहाद का हुक्म था, 38 तरगीबे जिहाद और इसके रास्ते की रुकावट यानी हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत है, और फिर 42-93 मुनाफिकीन के ख़िलाफ़ जिहाद है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता करे। जेम्स ऑफ पारा, सुनहरे हरूफ, हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत, अपना मुहासबा करते हैं। हिजरत और जिहाद की अहमियत, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत और इताअत, ईमान, तकवा और तवक्कुल, उम्मत का अरूज आपके मेरे लिए ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा गोल और हदफ होना चाहिए, आखरत को दुनिया के मुकाबले पर तरजीह देना यही मतलूब है, और मुनाफिकों का हिजरत, जिहाद और कुर्बानी से परहेज़ करना। अल्लाह अच्छी बातों को हमारे अंदर डाल दे और बुरी चीज़ों को अंदर से निकाल दे। फितनों का हल यानी क्यों हमें कराहत आती है मौत से, तो देखिएगा कि दुनिया और आखरत के मुतालिक सबसे पहले अपनी सोच तब्दील कीजिए। एक हदीस अल्लाह के नबी की समझ आ जाए ना, तो यकीन करे बात समझ आ जाती है। और वो क्या है कि आखरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल ऐसे है जैसे किसी ने समंदर में उंगली डिप की और उंगली के साथ जो पानी लगा ये दुनिया, और आखरत लिमिटलेस ओशन। अब बताइए मुझे, एक कतरे को पाने में खप गए हप गए, हमारी जिंदगियां परेशान हो गई, हमारे औलादों की, उन्हीं के मुस्तकबिल, उन्हीं की चीज़ें, तो पीछे समंदर का क्या होगा? बस इसको सोच लीजिए, बाकी काम आसान होंगे इंशाल्लाह। दुनिया दारुल अमल और इम्तिहान की जगह है, इसलिए दुनिया की जीनत और धोखे में आकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। यहाँ एक कोड वर्ड जो अक्सर हम बोलते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, दुनिया काम की जगह, आखरत आराम की जगह। मोमिन तो कब्र में जाके आराम करेगा, नम कनौ मतिल अरूस, सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है। हम यहाँ आराम फरमा रहे हैं, पता नहीं वहाँ क्या होगा। अल्लाह रसूल और कुरान सुन्नत से गहरा ताल्लुक़ कायम करना है, दुनिया की बेसबाती पे गौर और तदब्बुर कुरान करना है, हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत के फितने से दूर रहना है, दुनिया को जन्नत बनाने की बजाय आखरत की नेमतों के बारे में सोचकर इसकी तैयारी करनी है, अम्बिया और साहबे कराम के किरदार और सीरत से वाकफियत हासिल करनी है, दुनिया परस्तों की सोहबत से दूर रहना है और सोहबते सालेहीन इख्तियार करनी है और मौत को कसरत से याद करते हुए इससे डरने की बजाय इसकी तैयारी करनी है। कोई डरता ही रहे, मेहमान आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, फायदा होगा, वो तो आ ही जाएंगे। आप उठिए तो कुछ पका लीजिए, घर साफ कर लीजिए, तो आपको फिर बल्कि मेहमानों का इंतजार लगेगा। तो वो लोग तो मौत का इंतजार करते हैं जो गठरी बांध के बैठे हुए हैं, कब वक्त आए और हम चल पड़े। इस बात का यकीन रखना कि उम्मत के जवाल का इलाज दुनिया से नहीं, मौत से मोहब्बत और जिहाद में है। मुनाफिक हिजरत, जिहाद और कुर्बानियां नहीं कर सकते, ये सोचते हुए अपने अंदर छुपे हुए निफाक को दूर करना है। दुनिया की मोहब्बत में इतेदाल पर रहते हुए जान, माल और जुबान से जिहाद करना है। पिछली जिंदगी पर तौबा इस्तिग़फ़ार और आइंदा जिंदगी पर हिदायत और इस फितने से दूरी के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला आपसे मुझसे कबूल करे। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ रब, हमसे ये छोटी सी खिदमत कबूल फरमा अपने दीन की, और इससे सबसे ज़्यादा हमें खुद को फ़ायदा लेने वाला बना, और बेशक तू ही कबूल करने वाला है। आज अल्लाह की तौफीक से 1/3 कुरान पूरा हुआ, तीसरा हिस्सा कुरान का पूरा हो गया। क्या अमल भी तीसरे हिस्से में ढला? क्या मेरी 1/3 बुराइयाँ भी दूर हुईं? 1/3 सुस्तियाँ दूर हुईं? मकसद से गाफिल जो ज़िंदगी गुजार रही थी, क्या मैंने उसको अपने लिए कोई गोल बनाया? वो लोग तो ना जा सकने पे रो रहे थे और उनकी आंखें रोती थी कि हम क्या करें, कहीं हम अपनी दी हुई जिम्मेदारियों को रो रो के तो नहीं निभा रहे कि अल्लाह तूने क्यों मुश्किल में डाल दिया और घर दे दिया और बच्चे दे दिए और ऊपर से दीन का भी काम दे दिया। ये हर एक को सोचना है, और इसी से इंशाल्लाह हम अपनी असल को जानेंगे। कुरान एक आईना है, और ये आईना आपको आपका चेहरा दिखाता है, और अपना चेहरा देखना उस वक्त बहुत खूबसूरत होता है जब आपका चेहरा साफ है, आपकी स्किन अच्छी है, आपने बहुत अच्छा अपने आप को रखा हुआ है। लेकिन जिस वक्त चेहरे पे दाग हों, धब्बे हों, बाल हों और जो कुछ भी खुराफात हो सकती हैं, तो फिर इंसान चेहरा नहीं देख सकता, और ख़ास तौर पे सनलाइट में। तो आपको अगर कुरान का ये 10 पारों का सफ़र अपना चेहरा देखने में मददगार हुआ है तो कोई बात नहीं, दाग धब्बे दूर कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने आपको मुझे आज ही बता दिया, और इसी तरह से आगे से अपने आप को साफ़ कीजिए, तो आप कह सकते हैं कि कुरान क्लिनज़र भी है, टोनर भी है, पॉलिशर भी है। बस अमल कीजिए, अल्लाह ताला आपसे मेरे से कबूल करे। वही वाक़या, वही उसके सारे सीक्वेंसेस से पारा शुरू होता है। आइए देखते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। रब्बिश्राहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुयस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वाला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा बारक अला इब्राहीमा वाला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला ये दुरूद पढ़ने की बरकत से हमारे इस अगले सफ़र को आसानियों वाला बनाए, और पिछले सफ़र से और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इस पारे और इस अगले पारों का हक अदा कर सकें। पारे का नाम है या तज़ीरून, उज़र से है, वो उज़र करते हैं। एक होता है उज़र, इसमें ता लग के शिद्दत आ गई, और इसमें तबूक के सफ़र पे साथ ना जाने वालों के उज़र और बहानों का जिक्र है। तो इस पारे का जो बुनियादी थीम और वो मौजू जिसके अंदर हम इसको इंशाल्लाह देखेंगे, वो है उज़र बहाने का फितना। ये कौन से उज़र बहाने, ये किस चीज़ से बहाने? ये अल्लाह की इताअत से उज़र बहाने, ये नमाज रोज़े से उज़र, ये अपनी इस्लाह करने से उज़र रहने वाली बातें हैं, दीन के काम से पीछे रहने के उज़र बहानों की बात है। आप देखिए कि उज़र करने वाला कौन है, माजूर है। ये वो लोग हैं मुअज़्ज़िरून, पीछे ही पढ़कर आए हैं, जाल मुअज़्ज़िरून। आयत 90 को अगर आप देखें तो वो मुअज़्ज़िर होते हैं। खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं मुअज़्ज़िर हूँ? दुनियावी माजूरी को तो हम हैंडीकैप कह दें और सोचते हैं कि इस बंदे के पास तो बस आंखें नहीं, हाथ नहीं, कुछ नहीं। क्या मेरे आपके पास भी कोई ऐसे ही उज़र मौजूद हैं? आप देखिएगा कि इस बारे में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसको मैं चंद जुमलों में समअप करती हूँ, क्योंकि जब हम बीच में वो आयतों से गुजरते हैं तो टेम्पो नहीं टूटना चाहिए और वक्त बीतना नहीं है, वक्त अभी भी गुंजाइश नहीं दे रहा। लेकिन जाहिर है कि आपने मैंने सिर्फ तर्जुमा तो नहीं सीखना ना, तो आप देखिए कि आयत 97 में हम देखेंगे कि उजर बहाने करने वालों में आहिस्ता आहिस्ता निफाक आ ही जाता है, और आयत 100 में देखेंगे कि उजर बहाने करने वाले कभी भी साबिकून अलवलून में शुमार नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा ये जाएंगे ना तो असहाबुल यमीन की कैटेगरी में। और इनका फर्क जानना चाहें तो आज से गालिबन 2.5 साल पहले एक सेमिनार हुआ था न्यू जर्सी में, आप उसको सुन लीजिए, जिसका टॉपिक ही ये था, असहाबुल यमीन से साबिकून अलवलून तक। आज हमारा यही मसला, हम थोड़े पे राजी, हम कहते नहीं, थोड़ी जन्नत ही ठीक है, हमें बहुत सारा तो नहीं चाहिए। फिर इसी तरह से हम देखेंगे आयत 98 में भी कि उजर बहाने करने वाले हर वक्त जमाने की गर्दिशों का शिकार रहते हैं, या तरब्बसू नबिकुम उद्दवायर, खबरें सुनते रहते हैं, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। और इसके बाद फिर हम आयत 118 में देखेंगे खुद को लॉकडाउन में करने वाले, बगैर उजर के पीछे रहने वाले तीन सहाबी, जिनके नाम पे शायद इस सूरत को बहुत सारे लोग मासूम करते हैं, कि जब वो सफ़र से वापसी पे अल्लाह के नबी के पास आए तो अपना सच्चा उजर पेश किया कि बस सुस्ती कर दी, ढीले हो गए, हालात तो बड़े अच्छे थे, तो फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि इन सब से लॉकडाउन कर लो, और ना सलाम ना दुआ, और कैसे वदा कतलई हिमोलर दुबी मा राहुबत की कैफियत में आ गई। फिर इसी तरह से आयत 120 में हम देखेंगे कि जो दीन का काम उजर बहाने के साथ नहीं करते, वो असल में अल्लाह के नबी की जान पर अपनी जान को अजीज समझते हैं, नहीं सोचते कि अल्लाह के नबी कितना हिलकान हो रहे हैं। और ऐसे एक सहाबी थे अबू खैसमा, पीछे रह गए तबूक के सफर में, ना जा सके, काफिला सुबह सुबह उठ के निकल गया, दोपहर हुई खेतों में आए, बीवी ने खाना रखा, लुकमा तोड़ के मुंह में डालने की देर थी कि एकदम ख्याल आया कि अबू खैसमा तुफ है तुझ पे, तू तो यहाँ मौज कर रहा है, मजे कर रहे है। और उनके मजे भी क्या थे, जरा से नोट कर लें, हमारे तरह लग्जरियस लाइफ थोड़ी थी जो इस वक्त गुजार रहे हैं। साग होगा, रोटी होगी, दरख्त के साय में पानी छिड़का होगा, बीवी ने कहा तू मजे कर रहा है, और अल्लाह का नबी पता नहीं इस वक्त कहाँ होगा। उन्होंने खाना भी खाया कि नहीं, और वहीं लुकमा छोड़ा, बीवी से कहा मेरी सवारी तैयार करो, और घोड़ा दौड़ाते हुए अल्लाह के नबी को जा मिले। आप भी उन्हीं का राह देख रहे थे, कहा अल्लाह करे ये वो खैसमा हो। तो याद रखिए, आपकी जान को ज्यादा जान है, दूसरों को देखा करें कि वो कैसे हिलकान होते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि 122 में हम देखेंगे कि हर गिरोह में से एक छोटा गिरोह निकले, अली ये तफक्कहु फिद्दीन, तफक्कुह फिद्दीन करना पड़ेगा, और इसके लिए मेहनत करेंगे तभी मुआशरे की छोटी छोटी गलियों में भी दीन का ये पानी पहुंचेगा। जैसे हमारे जिस्म में खून दिल से शुरू होता है और बड़ी बड़ी नालियां तो उंगलियों में पहुंच भी नहीं पाती, लेकिन वहां पतली पतली आर्टरीज हैं। तो आप में से हर एक, मेरे में से कोई आलिम नहीं बनेगा, कोई मुफ्ती नहीं बनेगा, बस एक छोटी सी नाली बनकर अपने इर्द गिर्द के माहौल को हमने इंशाल्लाह सिराब करना है। कमेंट एक है, काम सबके मुख्तलिफ हैं। फिर इसी तरह से हम देखेंगे आयत 127 में कि कुरान की ये सूरतें उनके दिल की गंदगी को बढ़ाती हैं जिनके अंदर निफाक होता है और उजर बहाने करते हैं, दूसरे लफ्जों में कह लें कि सुन सुनकर सुन हो गए। और फिर सूरत के आखिर में देखेंगे 128 में हरी सुन अलैकुम, अल्लाह के नबी की हिर्स थी, कभी भी लोगों को रुख्सत नहीं देना चाहते थे, काम करते और करो, चल रहे हो तो भागो, भाग रहे हो तो हांपो, और ये हिर्स थी नेकियों की, खुद भी हरीस थे नेकियों पे और अपने साथियों को नफा देने पे भी थे, और आखिर में हस भी अल्लाह, कैसे अल्लाह काफी है, अगर इस रास्ते में कोई मुश्किल आती है तो क्या हुआ। तो अपने आप से पूछिए, क्या हकीकत में मैं भी उजर बहाने कर करा के इन सारी चीजों से पीछे तो नहीं रहती। फिर आप देखेंगे कि सूरत यूनुस शुरू होगी अदम सिदकिन पहली आयत में, कि शुक्र करो तुम्हें अल्लाह ने सच्चाई के रास्ते में बुलाया, किसी गुना की दावत को फैलाने में नहीं हो। फिर इसी तरह पहली तीन आयतों में आप देखेंगे कि कायनात को यूजर पेश नहीं करती, सूरज चांद सितारे तो कभी आज तक मुअज्जिर ना बने और हम क्यों बन गए, जब अल्लाह कहते आ जाओ आ जाते हैं, जब अल्लाह कहते रुक जाओ वो रुक जाते हैं, बात यह कि जब अल्लाह का मुकाम समझ आ जाता है तो फिर अल्लाह के काम से रुकने के सारे उजर बहाने खत्म हो जाते हैं। फिर आयत नंबर 9 को हम देखेंगे कि जिन्होंने उजर करने की बजाय अमल सालेह पेश किए, यहदीहिम रब्बुहुम, उनका रब उनको हिदायत देगा। और फिर आयत नंबर 11 में हम देखेंगे कि जब हकीकी उजर लाहक हो जाता है, फिर वाकई अल्लाह पकड़ता है। देखिए, आप सिख में लेंगे तो फिर अल्लाह को चाहिए ना कि आपको सिख करें, और आप घर बैठकर पैसे ले रहे हैं और काम कोई और कर रहे हैं, और इसी तरह दीन से आप छुट्टी लेते हैं, नज़ला भी हो जाए, ज़ुकाम भी हो जाए, तो फिर अल्लाह पकड़कर सचमुच में बीमार कर देता है। फिर वो दिन रात उठते बैठते अल्लाह को पुकारता है, और ज़रा उधर दूर हुआ तो कहते हैं तू कौन और मैं कौन। और आयत 21 में देखेंगे कि जब अल्लाह वाकई उधर दूर कर देते हैं तो आयतों में मकर करने लगता है फिर अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ बातें करते करते, वो यब गुना फिलर थी सरकशी करने लगते हैं। और फिर 28 आयत में आप देखेंगे मैदाने मख्शर में एक दूसरे को उजर दे रहे होंगे, तेरी वजह, तूने रोका मैंने रोका, और इनकार कर देंगे माँ कुन तुम या ना था बुदोन, शौहर भी कहेंगे मैंने थोड़ी रोका था, बीवियाँ भी कहेंगी आपकी वजह से। यानी क्यामत के दिन भी लोग एक दूसरे को वजह बना रहे होंगे अपने दीन से रुकने की। और आयत 62 में हम देखेंगे औलिया अल्लाह ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, विलायत के दर्जे पे वो नहीं पहुंचते जो जिंदगी में सिर्फ उजर बहाने करके दीन के कामों और दीन के तकाजों से पीछे होते गए। उनको सुकून नहीं मिलेगा, उनको खुशी नहीं मिलेगी, बिल आखिर डिप्रेशन और एंगजाइटी उनका नसीब होगी। और इसी तरह आयत 71 में हजरत नूह का जिक्र पढ़ते हुए सोचेंगे हम, क्या 950 साल, 10 सदियों के करीब का वक्त, क्या हजरत नूह को कोई उजर ना आया उस दौरान? बीमार ना हुए, परेशान ना हुए, वो कोई उजर नहीं देखते और वो किसी वक्त नहीं रुके, तो फिर आपके मेरे उजर क्यों हैं? और आखिर में फिर हम देखेंगे कौम यूनस का किस्सा भी 98 में, कि अजाब को देखा तो सारे उजर भूल गए। अल्लाह ताला से दुआ करके पारा शुरू करेंगे कि अल्लाह तू हमारे लिए इस काम को सहूलत के साथ और आसानी से करना आसान कर दे। जब भी हम नियत कर लेते हैं ना तो अल्लाह ताला फिर तौफीक भी दे देते हैं। पारे की जो मरकजी आयत है वो आयत नंबर 100 है, वस्साबिकून अलव्वलून मिनल मुहाजरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिएहसान रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन वअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अलअन्हार। ये नोट करने की बात है, वाहिद मुकाम है कुरान पाक का जहाँ मिन तख्तिहा नहीं आया, तहतहा आया। खालिदीन फीहा बदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। वो मुहाजिर और अंसार जिन्होंने सबसे पहले दावत ईमान पर लब्बई कहने में सबकत की, नीज वो जो बात में रास्तबाजी के साथ पीछे मिल गए यानी ताबईन, अल्लाह ताला इनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो इनमें हमेशा रहेंगे, यही अजीम शान कामयाबी है। तो देख लीजिए, ये है आपके लिए मेरे लिए क्राइटेरियन। आज से इस आयत को लिख कर अपने शीशे पे लगा लीजिए कि अगर उजर बहाने वाला दीन चाहिए तो फिर साबिकून में तो मैं नहीं हूँ, अव्वलून में तो हो ही नहीं सकती, मैं मुहाजिर कैसे हूँ, मेरे से कुछ उठता ही नहीं अल्लाह के लिए, अंसार मैं नहीं हूँ, इत्तबों बेहसान हूँ कि नहीं, शायद थोड़ी बहुत हो जाऊँ, तो फिर रदी अल्लाह अनहुम की पुकार मेरे कानों को कैसे मिलेगी। तो अपने लिए बिग गोल्स बनाई, हाई अचीवर बनी है बियॉन्ड द ब्लू स्काई, और इसके लिए दुआ मांग लीजिए, क्योंकि ये बड़ी खुशबख्ती का काम है जो अल्लाह अपने काम ले लेता है ना किसी से, वो दुनिया में बहुत खुशबख्त है। तो इसके लिए खुशबख्तियों की दुआएं मांग लीजिए और बदबख्तियों से परहेज़ की दुआ भी है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अश्शिक़ाक़ी वन्निफ़ाक़ी वसूइल अख़लाक़ी। ए अल्लाह, मैं फूट से, निफाक से और बुरे अख्लाक से तेरी पनाह मांगता हूँ। अबू दाऊद की रिवायत है 1546। तो आप इस दुआ को जब मांगे तो साथ ही साथ ये नियत भी किया करें कि अल्लाह ताला मुझे कला ग्रुप विद इन ग्रुप अपने आप को अलग करके या लोगों को लड़ाने झगड़ाने वाला ना बना, निफाक भी निकाल दे और बुरा अखलाक भी निकाल दे, क्योंकि बुरे अखलाक की वजह से भी बहुत सारे लोग दीन का काम नहीं कर पाते। फिर इसी तरह तिर्मिज़ी की रिवायत है 4277, आपने फरमाया क़यामत के दिन लोगों की 3 पेशियाँ होंगी यानी हाजिरियाँ, 2 बार की पेशी में बहस और तकरार होगी और उजर और बहाने होंगे, क्या आवाज़ें बुलंद होती भी नहीं सुनाई जा रही? जो यहाँ उजर करेंगे वो वहाँ भी कोशिश करेंगे कि इधर भी मानी जाती थी हमारी बात, वहाँ भी चलो उजर पेश करते हैं। और 3री बार में आमाल नामे हाथों में उड़ रहे होंगे, चुप खामोश, तो कोई इसको अपने दाएं हाथ में और कोई बाएं हाथ में पकड़े होगा। तो आज यूजर बहाने छोड़ने हैं। पारे के हाइलाइट्स, क्या कुछ सीखने वाले हैं आप इस पारे में, शायद आपको इसका अंदाज़ा भी ना हो, तो चंद जुमले देख लीजिए। अल्लाह और आखरत पर ईमान लाना सीखेंगे, तकवा और अल्लाह की रज़ा पर ज़िंदगी की बुनियाद रखना सीखेंगे, जन्नत का सौदा करना सीखेंगे, आज एक ट्रेडिंग है, दीन की समझ बूझ पैदा कैसे होती है, अपनी कौम को खबरदार करना और मुनजिर का किरदार अदा करना सीखेंगे, और दूसरों की भलाई का हरीस बनना सीखेंगे, मोमिनों पे शफकत और मेहरबानी करना सीखेंगे, और अल्लाह ताला की आयात का इल्म हासिल करना और अल्लाह के दीन के लिए यानी अल्लाह के लिए दीन को खालिस करना सीखेंगे, अल्लाह ताला की आयात में गौर व फिक्र करना सीखेंगे, हक की तरफ रहनुमाई करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना सीखेंगे, और सबसे बड़ी बात सूरत यूनस आयत 58 की रोशनी में अल्लाह के इस कलाम पर खुशियाँ मनाना सीखेंगे। फ़बिज़ालिक फ़लयफ़रहू हुव खैरुम मिम्मा यजमाउन। और अल्लाह ताला से डर कर रहना सीखेंगे, अल्लाह ताला की आयात के साथ नसीहत करना और साबित कदम रहना सीखेंगे, अल्लाह ताला की वही पर ईमान लाना सीखेंगे, और अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करना यानी जो आपके मेरे लिए लाजिम है ये अमल सीखेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। ये सूरत तौबा की आयत नंबर 94 से एंड तक यानी 129 तक, और इसके बाद फिर सूरत यूनुस भी, और चंद आयतें सूरत हूद की भी इसमें हैं। आइए शुरू करते हैं अल्लाह ताला से दुआ मांगकर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم। ये लोग तुम्हारे सामने उज़र पेश करेंगे जब तुम इनके पास वापस जाओगे। आप कह दीजिए कि ये उज़र मत पेश करो, हम कभी तुमको सच्चा न समझेंगे, अल्लाह ताला हमको तुम्हारी खबर दे चुका और आइंदा भी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे। अल्लाह ताला हमको तुम्हारी खबर दे चुका यानी माजी की तरफ इशारा, और आइंदा कभी अगली जंग में भी तो मौका पड़ेगा तो भी हम देखेंगे कि आप क्या करते हो, फिर इसी के पास लौटाए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर सब का जानने वाला है, फिर वो तुमको बताएगा जो कुछ तुम करते थे। फयुनब्बियुकुम बिमा कुंतुम तामलून। बस अल्लाह के नबी का मदीना की तरफ वापस आना क्या था तबुक के सफ़र से कि उज़र बहाने करने वालों की लाइनें लग गईं। चूँकि रोमियों के मुकाबले में लड़ाई की उम्मीद नहीं थी इसलिए मुनाफिक तो निकले ही ना, क्योंकि मुनाफिक तो कामयाबी के लिए निकलता है, हक के लिए तो नहीं निकलता। नतीजा क्या हुआ देखिएगा ज़रा, किस किस ने कैसा उज़र किया। उज़र और बहानों के लिहाज से तबूक से रुकने वाले लोग तीन किस्म के थे। आयत 94 से ही आपको ये बात समझ आ जाएगी। एक थे सच्चे मोमिन, सच्चे थे लेकिन उज़र था, सच्चा उज़र भी था, बीमार थे, माजूर थे, सवारी की अदम दस्तियाबी थी। दूसरी किस्म के मोमिन सहाबा थे, रुके मगर झूठा उज़र और बहाना ना किया। इनकी तौबा और अल्लाह के फैसले का इंतज़ार किया गया, और इन्हीं का जिक्र इस सूरत में तीन लोगों के नाम पे आता है। और तीसरे मुनाफिकीन थे, झूठे उज़र झूठे बहाने बनाने वाले, ये कस्में खा खा कर आपको अपनी सच्चाइयाँ बताते थे। अब अगली चंद आयात इसी तनाजर में हैं। हाँ वो अब तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाएंगे जब तुम इनके पास वापस जाओगे, ताकि तुम इनको इनकी हालत पर छोड़ दो। बस अगर तुम इनको इनकी हालत पर छोड़ दो यानी फिर आप भी छोड़ दीजिए, अल्लाह के नबी ने कोई रिएक्शन शो नहीं किया ऐसे लोगों पर जिनके दिल खोटे थे, और उनको देना भी नहीं चाहिए था इसलिए कि उन्होंने जाकर भी कोई बड़ा कारनामा तो करना नहीं था। तो अल्लाह ताला कहते लेट देम गो, लीव देम, वो लोग बिल्कुल गंदे हैं और इनका ठिकाना दोजख है इन कामों के बदले जिन्हें वो किया करते थे। ये इसलिए कस्में खाएंगे कि तुम इनसे राजी हो जाओ, सो अगर तुम इनसे राजी भी हो जाओ तो अल्लाह ताला तो ऐसे फासिक लोगों से राजी नहीं होता। याद रखिए मुनाफिक अल्लाह से ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना चाहते थे, तो अल्लाह कहते अगर आप खुश होते हैं तो हो जाइए लेकिन मैं तो इनसे खुश नहीं हूँ। बड़ा ज़बरदस्त अंदाज है। देहाती लोग कुफर और निफाक में भी बहुत सख्त हैं और इनको ऐसा होना ही चाहिए, कहीं इनको इन अहकाम का इल्म ना हुआ जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए, और अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला बड़ी हिकमत वाला है। क्या पता चला ला इल्मी भी मुनाफ़त लेकर आती है। आप देखिए कि आज यहाँ पर मैं किसी को कह सकते हैं ये मुनाफिक है चूँकि इल्म नहीं ले रहा, नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि वही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आती थी, उनको बताया जाता था। और दूसरी बात है कि मुनाफ़िक दिल के इरादों से जुड़ी हुई है और दिलों पर सिर्फ अल्लाह की नज़र है। और इन देहातियों में से बाज़ ऐसे हैं जो कुछ खर्च करते भी हैं तो इसको जुर्माना समझते हैं। जैसे आज कुछ लोग ज़कात भी बड़ी बोझल समझ के उतारते हैं, हाय ज़कात देनी पड़ेगी, नहीं 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 इसको बेच दो, उनको तावान लगता है, जुर्माना लगता है। और तो मुसलमानों के वास्ते बुरे वक्त के मुंतज़िर रहते हैं, बुरा वक्त इन पर पड़ने वाला है और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। और बस अहले देहात में ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, और जो कुछ खर्च करते हैं इसको अल्लाह के करीब होने का जरिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का जरिया बनाते हैं। इसको हाईलाइट कीजिए। आप कहीं भी वॉलंटियर कर रहे हैं ना दीन के नाम पे, ये आपके लिए बेस्ट गाइडलाइन है, कुर्ब अल्लाह का और दुआएं रसूल की। याद रखो कि इनका ये खर्च करना बेशक इनके लिए मूजिबे कुर्बत है, इनको अल्लाह ताला ज़रूर अपनी रहमत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला बड़ी मगफरत वाला और रहमत करने वाला है। अरबी कौन थे जिसको आज हम बद्दू या गंवार या देहाती कहें? तो मदीना के इर्द गिर्द जो सबर्ब्स में लोग रहते थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो अब उन्हीं की मुख्तलिफ किस्मों का जिक्र है। देखिएगा ज़रा, दो बड़ी किस्में हैं, एक मोमिन थे, सादा दिल थे, ये दीनदार देहाती थे, और दूसरे जाहिल अरबी थे। जो दीनदार अरबी थे वो मोमिन भी थे, सादा दिल भी थे, माल खर्च करते थे, और वजह क्या थी कि अल्लाह का कुर्ब पाएँ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं लें। इसके बरक्स जाहिल अरबी कुफर और निफाक में सख्त दिल थे, माल खर्च करते हैं बोझ समझकर, यानी माल को बोझ समझते थे, तावान लगता था उनको, और वजह क्या थी कि इस्लाम की मरूबियत, यानी वो इस्लाम में दाखिल, इस्लाम की पंप एंड शो देख कर आए थे, हक समझ कर नहीं आए। और इसके बाद अब एक खूबसूरत आयत, और ये इस बारे की थीम आयत भी है, साबिकून अलव्वलून। बस इस पे नजरें जमा लीजिए, आपको कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बस साबिकून अलव्वलून मिनल मुहाजरीन वल अंसार, और जो मुहाजरीन और अंसार साबिक और मुकद्दम हैं, और जितने लोग इखलास के साथ इनके पैरों हैं, अल्लाह ताला इन सब से राजी हुआ और वो सब इससे राजी हो गए। रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, और अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। बस इस आयत में से अपने आप को ढूंढ लीजिए, दीन का कोई काम ज़रूर पकड़ लीजिए, क्योंकि साबिकून अलव्वलून सिर्फ मक्का और मदीना वालों में नहीं थे मुहाजरीन और अंसार की सूरत में, बल्कि ये हर दौर में होते हैं। वहाँ कौन थे इसका कोई एक नाम नहीं दिया, एक लिस्ट मिलती है, गो थ्रू कर लेते हैं। बस मुफसरीन कहते हैं साबिकून अलव्वलून वो थे जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया या हिजरत की, दूसरी राय क्या है कि जिन्होंने सुलह हुदैबिया या जंगे बदर में शिरकत की, तीसरी एक राय ये भी है कि जिन्होंने दोनों किबलों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। बैत रिजवान और अशरय मुबशरा के बारे में भी ये ख्याल आता है कि वो थे। और सही बात आज आपके मेरे लिए अमल की, हर दौर में इस्लाम के लिए निकलने वाले, जब लोग इस्लाम को गिराना चाहें ये उठाने लगे, जब लोग इस्लाम से भागें ये इस्लाम की तरफ भागें। आज आप या तो मुहाजिर बनेंगे या अंसार। मुहाजिर वो है जो अल्लाह के लिए अपनी गलत आदतें छोड़े, हराम छोड़े, मकरूहात को छोड़े। कुरान पढ़ने वाले, पहली दफ़ा अपने दिल पर इस बारिश को लेने वाले लोग मुहाजिर बनेंगे। ये 10 बारे पढ़ लिए, अब आगे भी चल पड़े, इससे आप अपने लिए अमल लें, क्या छोड़ना है क्या नहीं, आप मुहाजिर हैं। अंसार वो हैं जो कई साल से इन कोशिशों में लग चुके, अब घर का माहौल मुवाफ़कत वाला हो चुका, अल्हम्दुलिल्लाह जो एक जोश उठता झाग की तरह रिएक्शन ख़ानदान फैमिली में, वो भी ठंडे हो गए कि इनको इनके हाल पे छोड़ दें। अब आपका मेरा, और मैं इसमें अपने आप को कहूँगी इंशाल्लाह कि अल्लाह के हुक्म से हमारे लिए अब दीन पे अमल करना कोई इस तरह का छंबा नहीं है जो आज एक नए भाई बहन को दीन पे आने पे होगा। तो फिर हमारा फ़र्ज़ क्या है कि नए आने वालों के हाथ थामें, प्यार और मोहब्बत से उन मुहाजिरों को पकड़े। कितनी चोटें खा के आते हैं, रो रो के आते हैं, छुप छुप के आते हैं, इजाज़तें मांगते हैं मिलती नहीं है, दिल इधर अटकता है, आते हैं तो घड़ी पे नजरें होती हैं, फोन आ गया, मियाँ कहा है जल्दी से पकड़ लो, बोलना ना पड़े। कई ऐसे हैं कि आते हैं दर्स में और कहते हैं दोस्तों के अरबी सीखने जा रहे हैं। किसी की कोई मजबूरी, किसी की कोई मजबूरी। आप अपने लिए दुआ करें, मैं अपने लिए, कि अल्लाह मुझे साबिकून अलव्वलून वाली खूबियाँ दे दें। और वो कौन सी हैं? आला दर्जे के ईमान वाले होते हैं, पहले से ही मुंतजर होते हैं और तैयार रहते हैं नेकी करने के लिए, हुक्म मिलते ही अमल करने वाले होते हैं, नेकी की राह पर भागने वाले होते हैं, दीनी कामों के लिए सोचते नहीं हैं, क्योंकि पंजाबी में कहते हैं सोची पिया ते बंदा गया, फिर नहीं होता वो काम जो आप सोच में पड़ जाएं, दीन के लिए दुनियावी फ़ायदे छोड़ने वाले, दीन के लिए ख्वाहिशात को कुर्बान करने वाले, और दीन के मुजाहिद हर दौर के मुहाजर और अंसार हैं। एक सवाल खुद से कीजिए, दिल पे हाथ रख लीजिए पहले चले, हम दीन में साबिकून अलव्वलून हैं या दुनिया में? सेल का साइन देखा, सबसे पहले मैं, बाय वन गेट थ्री फ्री पहले मैं, फिल्म रिलीज हुई सबसे पहले मैं, डिज़ाइन निकला सबसे पहले मैं, कोई ब्रांड इंट्रोड्यूस्ड हुआ, दरवाजे पे खड़ी मैं, और जब दीन आया तो उजर और बहाने, मजबूरी बड़ी। दिल वैसे बड़ा करता है, देखिए गलत बात है, किसी ने बहुत सच कह दिया, जो हो जौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अगर आज तक आपकी जंजीरें नहीं कटी और आपके हालात मुवाफिक नहीं हुए, तो माजरत के साथ दिल को चेक कीजिए, क्योंकि सच्चे ईमान के साथ रुकावटें हट जाती हैं। तो साबिकून अलवलून बनने के कुछ मराहल होते हैं। सबसे पहले बंदा मुहाजिर होता है, गुनाहों से हिजरत करता है। किसी को तो नेल पॉलिश तक छोड़नी मुश्किल लगती है कि इससे नमाज नहीं होती, लेकिन उसको अजर मिलेगा इंशाल्लाह। सिगरेट तक नहीं छोड़ सकता कोई, छोड़ेगा तो अजर मिलेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान अनसार बनता है, फिर अपनी सहेलियों को बुलाता है, दोस्तों को बुलाता है, वो कहते हैं आओ देखो मैंने सुना, अच्छा लगा, मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, मैं गई, बहुत अच्छे लोग हैं। इस तरह अनसार बनते बनते फिर मरते दम तक इस्तकामत फिर दीन इख्तियार करने वाले लोग इंशाल्लाह ताला साबिकून अलवलून होंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे इन्हीं में शामिल कर दे। इसके बरक्स वमिम्मन हौलकुम मिनल अराबी मुनाफिकून। और एक जुमला बोल के याद शुरू करूं कि आज के दौर में जो दीन के लिए नहीं निकल रहा, मुफस्सरीन के नज़दीक वो मुनाफिक होगा, अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि नमाज रोज़ा तो हम अपने लिए करते हैं। और कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द वालों में और कुछ मदीने वालों में से ऐसे मुनाफिक हैं कि निफाक पर अड़े हुए हैं, आप इनको नहीं जानते, हम इनको जानते हैं, हम इनको दोहरी सजा देंगे, फिर वो बड़े भारी अजाब की तरफ भेजे जाएंगे। और कुछ लोग हैं जो अपनी खता के इकरारी हैं, जिन्होंने मिले जुले अमल किए थे, खलतु अमलन सालेहन। एक साहबी ने जब सुना कि फी ही जिक्रुकुम, तो कुरान पढ़ते रहे कि इसमें मेरा जिक्र कहाँ है, तो बहुत सारी आयतें पढ़ी, नेक लोगों की का इतना नेक तो नहीं हूँ, कुफार की पढ़ी का इतना भी नहीं बुरा, तो जब इस आयत पे आए तो कहने लगे मैंने खुद को पा लिया, क्या है खलत व अमलन सालेहन व आखरा सजिया, कुछ भले और कुछ बुरे। अल्लाह से उम्मीद है कि इनकी तौबा कबूल फरमाए, बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़ी मगफरत और रहमत वाला है। यानी नेकियां भी करता है इंसान शुरू में, लेकिन बुराइयां नहीं छुटती। अगर आप फर्स्ट टाइम सुनने के बाद ऐसे हैं तो डोंट वरी। तो खलत व अमलन सालेहन पे एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है, सुन लीजिएगा, रगबत और जोश भी आता है। और रिवायत सही बुखारी की है, 4674। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि रात ख्वाब में मेरे पास दो फरिश्ते आए और मुझे उठाकर एक शहर में ले गए जो सोने और चांदी की ईंटों से बनाया गया था। ज़रा सा विजुअलाइज करें, इमेजिनेट करें। वहाँ हमें ऐसे लोग मिले जिनका आधा बदन नहायत खूबसूरत, इतना कि किसी देखने वाले ने ऐसा हुस्न ना देखा होगा, और बदन का दूसरा हिस्सा नहायत बदसूरत था, इतना कि किसी ने ऐसी बदसूरती नहीं देखी होगी। दोनों फरिश्तों ने इन लोगों से कहा जाओ और इस नहर में गोता लगाओ। वो गए और नहर में गोता लगाकर आ गए। जब वो हमारे पास आए तो इनकी बदसूरती जाती रही और अब वो नहायत खूबसूरत नजर आते थे। फिर फरिश्तों ने मुझसे कहा कि ये जन्नते अदन है और आपका मकान यही है। अल्लाह अकबर। जिन लोगों को भी आपने देखा कि जिस्म का आधा हिस्सा खूबसूरत था और आधा बदसूरत, तो ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में अच्छे और बुरे काम किए थे और फिर अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। गुनाहों की और नेकियों की खिचड़ी, कोशिश कीजिए कि दुनिया में अल्लाह पाक कर दें। फिर आप देखिए कि आयत 102 में मखलूत अमल करने वालों का जो जिक्र है, नेकियां और गुनाह दोनों नहीं छूटते, यानी नेकी भी नहीं छूटती गुनाह भी नहीं छूटता। इसको कोडवर्ड बना लीजिए आज के पारे का। नेकियां करने को दिल चाहता करते हैं, लेकिन गुनाह छोड़ने तो बहुत मुश्किल है, और 100 नेकियां करनी आसान, एक गुनाह छोड़ना मुश्किल। फिर ये नेकियों के मौके को टालते ही रहते हैं, टालते ही रहते हैं। फिर नफ्स और ख्वाहिश परस्त होते हैं, कुरान की महफिल में आते हैं दिल कुछ और चाहता है, दोस्तों की महफिलों में जाते हैं कुछ और लगता है। फिर सुस्त और आराम तलब भी होते हैं कभी कभी, खुशियाँ और गमों में दो मुख्तलिफ गेटअप होते हैं इनके, किताब के एक हिस्से पे अमल और दूसरे पे नहीं, और रमज़ान और गैर रमज़ान में दो मुख्तलिफ किरदार। खुद से सोचेंगे कि मैं तो नहीं इसमें फिट होती, अगर इसमें भी इब्तदाई मराहिल में है तो कोई फिक्र की बात नहीं, लेकिन इधर स्टक हो गए तो बुरी बात है। देखिए कुरान का सारा गुस्सा उन लोगों पे आता है जो आगे नहीं बढ़ रहे। बच्चा है ना, छोटा है बच्चा, है वो बड़ा होगा, आप हर बच्चे को 3 माह बाद देखें वो बड़ा लगता है, लेकिन एक जगह आके हम स्टक हो जाते हैं ना, फिर हम या तो बढ़ते हैं या घटते हैं, और बुढ़ापे में तो फिर घटता ही है इंसान। हाँ बिल्कुल, याद रखिए कि हमारी नेकी की और दीन की भी ग्रोथ ऐसे ही होनी चाहिए। अभी आज पहली दफ़ा कुरान सुना है, थोड़ा सुन रहे हैं, रोएंगे तड़पेंगे, थोड़ा आगे आइए, सुनते जाएं सुनते जाएंगे, तफसीर से कुरान का कोर्स ज्वाइन करेंगे, एक दिन आएगा कि आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऐसे लोग मुनाफिक नहीं है। मसला ये है जो स्टक हो गए, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही, कितने साल से ना बुराई छूट रही है ना नेकी आगे आ रही है, तो करना क्या है? वट शुड बी आवर गोल, हमारा मकसद साबिकून अलव्वलून बनना है, आखरून और गुनागार मोमिन नहीं बनना। करें क्या? नंबर एक उजर और बहानों को तरक कीजिए। इस साल इस दौरे कुरान के बाद मैंने कोई उजर नहीं करना। इस लॉकडाउन से निकलने के बाद तो उजर बहाने सारे ख़त्म। जब इनमें रह सकते थे तो इसके बाद क्यों नहीं रह सकते थे उन चीज़ों और मजबूरियों के बगैर जिसको तुम अपने दीन के रास्ते की बेड़ियाँ बना लेते हो। फिर कसरत से तौबा और इस्तगफार करनी है, फस्तबिकुल खैरात बनना है, सदका देना और दुआ करनी है। गुनाहगार मोमिन और मुनाफिक का फ़र्क देखिएगा। गुनाहगार मोमिन कैसा होता है? दिल में इस्लाम, रसूलुल्लाह और दूसरे मुसलमानों से मोहब्बत होती है। इस्लाम का अरूज भी चाहता है मगर अमली हिस्सा नहीं डालता। सुस्ती और ख्वाहिशात की वजह से कभी दीन पर अमल करता है, कभी नहीं करता। ईमान बेचारा कमज़ोर सा होता है, स्किनी बिलीफ, थिन। मिले जुले अमाल करता है, इसका मामला अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह इनके साथ जो मर्जी करे। इसके बरक्स मुनाफिक क्या करता है? इस्लाम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से दिल में बुग़्ज़ रखता है, इस्लाम का जवाल चाहता है। लोगों को दिखाने के लिए इसको दीन पर अमल करना पड़ता है, दिल का रोगी होता है। इसके अमाल ज़ाया और ठिकाना जहन्नम। अल्लाह ताला में निफाक से बचा दे। अब किस चीज़ से निफाक ख़त्म होता है? सदका देने से, माल देने से। उसी की तरफ इशारा है, खुस मिन अमवालिहिम सदका। आप इनके मालों में से सदका लीजिए जिसके ज़रिए से आप इनको पाक साफ़ कर दें, और इनके लिए दुआ कीजिए। बिलाशुबा आपकी दुआ इनके लिए मूजिबे इत्मीनान है। जब कोई नेकी करे तो उसको दुआ दीजिए, क्योंकि ये दुआ दिलों के ऊपर एक सुकून का फाहा बनती है, और अल्लाह ताला खूब सुनता और जानता है। क्या इनको ये खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और वही सदक़ात को कबूल फरमाता है, और ये कि अल्लाह ताला तौबा कबूल करने में कामिल और बहुत रहीम है। दोबारा देखिए तौबा की बात है, शायद 10 से ज़्यादा दफ़ा इस सूरत में तौबा का लफ्ज़ आया है। कह दीजिए कि तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे अमल खुद अल्लाह ताला देख लेगा और इसका रसूल और ईमान वाले भी देख लेंगे, और ज़रूर तुमको इसी के पास जाना है जो तमाम खुली और छुपी चीज़ों का जानने वाला है, बस वो तुमको तुम्हारा सब किया हुआ बतला देगा। सोचिए उस दिन क्या होगा, क़यामत का दिन, शिद्दत की रसवाई का दिन ना बन जाए। और कुछ और लोग भी हैं जिनका मामला अल्लाह का हुक्म आने तक मुलतवी है, इनको सजा देगा या इनकी तौबा कबूल कर लेगा। अल्लाह ताला खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। क्या पता चला कि वहाँ लोग अपनी असल के हिसाब से, अपने ईमान के दर्जों के हिसाब से खुल जाएंगे। इसके आगे एक वाक्या है जिसमें मस्जिद दरार का जिक्र है। कुछ लोग बाहर काम दीन का करते दिखते हैं लेकिन अंदर कुछ और मोटिव्स होते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए यहाँ बात है। लेकिन जितनी बात की है ज़रा सा उसको एब्जॉर्ब कर लीजिए कि हमने निफाक की जितनी बातें बेबी पढ़ी, अब असल में उसके एक आखिरी शक्ल की बात करने लगे हैं। तो जितना भी आप इल्म से दूर रहेंगे मुनाफ़क़त आएगी, और जितना इंसान शम्मा से दूर होता है अंधेरा बढ़ता है ना। तो अल्लाह के नबी के करीब के लोग हिदायत के सरचश्मे के करीब थे, 3 नस्लों तक दीन बहुत अच्छा रहा, जिसको आप कह लें कि सहाबा का दौर, फिर ताबईन और तबा ताबईन। गाढ़ा था, कॉन्सेंट्रेटेड था, प्योर था दीन, जैसे सोना जहाँ से निकलता है वहाँ प्योर होता है। फिर पिछले लोग आते जाएंगे और मिलते जाएंगे। आज आप और मैं उस दौर से गुजर रहे हैं कि जो कह लीजिए कि दीन का आखिर का दौर नज़र आता है। आपका मेरा काम क्या है? साबिकून अव्वलून बनिए। अल्लाह ने आपको बहुत नेमतें दी, अब आगे बढ़ते जाइए। पिछले लोग आगे से आगे बढ़ते जाएंगे तो नए लोगों को कामों का मौका मिलता जाएगा। मतलब देखिए, जो सास अपने हाथ से चमचा ना छोड़े तो बहू कभी पकाएगी। पुराने लोग पीछे रहकर वॉच करें फूल की पत्तियों की तरह। नई पत्तियाँ खिलती हैं ना तो फूल ब्लूम करता है, खुलता ही जाता है। कभी ज़रा फूल को ठोकर लगेगी ना तो वो पीछे वाले आएंगे, वो गिरेंगे, अगलों को तहफ्फुज़ होगा। माँ बाप अपनी ज़िंदगी में बच्चों को इस तरह से ट्रेन कर दें कि ज़माने की गर्म सर सिखा दें, ताकि आने वाले दौर के तकाज़ों को हमारे बच्चे पूरे कर सकें। और आयत 101 में अल्लाह ताला ने इस बात का भी हमें यकीन दिला दिया कि मरद वलन निफाक, मुनाफिक को प्रैक्टिस इतनी हो जाती है अपने निफाक की कि छुपा लेता है, पता ही नहीं चलता उनको। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बाज़ दफ़ा इंसान निफाक में भी बहुत एक्सपर्ट हो जाता है। और खलत व अमलन सालेहन का एक दूसरा नाम रख लीजिए, सुस्त मोमिन। जब भी अपने अंदर दीन की कोई सुस्ती आए तो इस हदीस को जो आज आपके साथ कोट की गई, इसको याद कर लें और दुआ कर लें कि अल्लाह ताला मुझे वहाँ एक लम्हे की भी रुसवाई ना सहनी पड़े और मैं बेहतरीन तरीके से साफ सुथरी होकर जन्नत में चली जाऊं। और आयत 104 में हमने देखा एलमो, इल्म लिया, अब ए मलू, अमल करो। आप देखिए कि लोग इल्म लेते हैं फिर अमल नहीं करते, डिली डेली करते हैं। सिर्फ इल्म के बाद इल्म नहीं लो, अमल लो, खुद को चमकाओ, बेहतरी आएगी। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि तालिब इल्म बन चुके हो, अब तालिब अमल बन जाओ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। अब पढ़ते हैं वो पूरा वाक़िया जो मस्जिद दरार से मुतल्लिक है। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन, और बस ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन अगराज के लिए मस्जिद बनाई है कि ज़रर पहुँचाएँ और कुफर की बातें करें और ईमानदारों में तफरीक डालें और इस शख्स के क़याम का सामान करें जो इससे पहले से अल्लाह और रसूल का मुखालिफ है, और कस्में खाएंगे कि सिवाय भलाई के हमारी और कोई कुछ नीयत नहीं, और अल्लाह गवाह है कि वो बिल्कुल झूठे हैं। आप इसमें कभी खड़े ना हों। अलबत्ता जिस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से तकवा पर रखी गई, मस्जिद अभी भी मुराद है और बस मस्जिद कुबा की तरफ भी अगली आयत में इशारा देते हैं, वो इस लायक है कि आप इसमें खड़े हों। और इसमें ऐसे आदमी हैं जो खूब पाक होने को पसंद करते हैं और अल्लाह ताला खूब पाक रहन होने वालों को पसंद करता है। फिर आया ऐसा शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह से डरने पर और अल्लाह की खुशनुदी पर रखी हो, या वो शख्स के जिसने अपनी इमारत की बुनियाद किसी खाटी के किनारे पर जो कि गिरने ही को हो रखी हो, फिर वो इसको लेकर आतिशे दोजख में गिर पड़े। और अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को समझ नहीं देता। इनकी यही मार जो उन्होंने बनाई है हमेशा इनके दिलों में शक की बुनियाद पर कांटा बनकर खटकती रहेगी। हाँ मगर इनके दिल ही अगर पाश पाश हो जाएं तो खैर। और अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला बड़ी हिकमत वाला है। तो क्या पता चला इन सारी चीज़ों से आपको मुझे कि बाज़ जगहें होती दीन के नाम पर हैं लेकिन वो बेहतर नहीं। कैसे? इसको ज़रा सा देखिएगा इन आयतों के अंदर जो मजमून गया आयत 94 से 110। इसके बाद हम देखेंगे क्या देखा कि बनी इसराइल की राह पर मत चलो, तौबा से अजाब टल जाता है। और इसी तरह से मस्जिद दरार मस्जिद नहीं फितने का गढ़ है, मुसलमानों को तकलीफ और नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई। ये एक पूरा वाकया है। फस एक शख्स था जो बज़ाहिर अल्लाह के नबी का और इस्लाम का दुश्मन था लेकिन आपसे बना के रखता था ताकि लोगों को उसकी असल पे शक ना पड़े। तो तबुक के लिए जाने से पहले एक इमारत एक बिल्डिंग टाइप बनाकर कहा कि आप आकर इसमें एक नमाज पढ़ा दें। कुछ लोग आपसे सेंक्शंस लेना चाहते हैं इसलिए कहते हैं बस आप आके बिस्मिल्लाह कर जाएं ताकि दूसरों को कहें देखा उन्होंने तो खुद बिस्मिल्लाह की, उन्होंने तो इस काम को वेरीफाई भी कर दिया। तो ये भी एक किस्म की डिसीविंग थी। तो अल्लाह ताला ने मना कर दिया। वापस आने से पहले रास्ते में ये आयतें उतर गईं। तो मस्जिद दरार से पता चला कि हर मस्जिद मस्जिद नहीं होती, ख़ास तौर पे वो जो फ़िरकावारियत के लिए बनाई जाए और यूनिटी को ब्रेक करने के लिए जो दीन का काम किया जाएगा वो दीन नहीं होगा। तो मुसलमानों को तकलीफ़ और नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई, कुफर के लिए बनाई गई, और इसी तरह से मुसलमानों में तफरीक डालने के लिए बनाई गई। ज़ारे कुछ इधर आएंगे कुछ उधर आएंगे, लिख लीजिए दीन का मिजाज तोड़ने का नहीं जोड़ने का। बस लोग उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को निकालते हैं फिर एक नाम बनाकर आगे चल पड़ते हैं, निरा फितना फैलता है। याद रखिए ये दीन नहीं है। कोई किसी की बीवी के साथ ताल्लुक़ पैदा करके उसको ले जाए तो इसको कितना बुरा हम समझते हैं। आज आप कितने मारूफ तरीके से सुनते हैं, वो एक जमात बनी फिर उनमें से कुछ लोग कट गए, फिर उन दोनों ने मिलकर आपस में जमात बना ली। आज हमारी मस्जिदों की ये अल्लाह रहम करे कि शोहरत बन चुकी कि ये बनाई उसने फिर उनमें मसला हुआ फिर मैनेजमेंट में और इमाम साहब में झगड़े हुए फिर ये देखो ज़रा गली के दूसरे कोने पे एक और मस्जिद बन गई। याद रखिए ऐसी हर मस्जिद मस्जिद दरार बनेगी जो उस माशरे में तफरीक डालने के लिए होगी। इस्लाम दुश्मन साजिशों की रसदगाह थी वो, वहाँ बैठकर एक्टिविटीज़ होती मीटिंग्स होती और नाम चूंकि मस्जिद का था तो वहाँ आने जाने वालों पर कोई शक न करता। तो लेबल से धोखा ना खाएं, अपने लिए जुमला लिख लीजिए लेबल से धोखा ना खाएं। हर गुड डीड राइटियस डीड नहीं होता, अपने हर अमल को आप नेकी ना समझिए जब तक नीयत अच्छी ना हो इरादा अच्छा ना हो। ये मस्जिद उन्होंने अपनी बातनी तहारत के लिए नहीं बनाई थी बल्कि कमर्शियल प्रोपेगंडे के लिए और इसी तरह से दुनियावी फवायद के लिए थी और वहाँ करप्शन होने लगी। तो जब मस्जिदों में ऐसा होने लगे कि मस्जिद दरार इस्लाम दुश्मन साजिशों का हेडक्वार्टर बन गया तो क्या आप उसको दीन कहेंगे? अल्लाह के नबी ने आते ही उस मस्जिद को गिरा दिया अल्लाह के हुक्म से। तो क्या पता चला कि दीन के काम करने वाले भी बाज़ दफ़ा माशरे के अंदर बेचैनियाँ पैदा करने वाले होते हैं। अब 111 आयत है जन्नत का सौदा। अल्लाह ताला आपको मुझे शौक़ दिलाते हैं रग़बत दिलाते हैं कि देखो ऐसे लोग जो ये काम कर रहे हैं उनको तो छोड़ो, तुम क्या करो अपने आप को अल्लाह के साथ एक सौदे में बांध लो إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. ایک ٹریڈنگ ہو رہی ہے جس کی شرائط آپ سن لیجئے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے بس خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی. وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جن میں قتل کیے جاتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں, جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. اس پر سچا وعدہ کیا گیا تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں, اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اس بے پر, یعنی اس ٹریڈنگ یا اس سودے پہ جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے, خوشی مناؤ, یہ بڑی کامیابی ہے. وہ ایسے ہیں, اب اس سودے کے اوپر سائن کرنے والوں کی کوالیفیکیشنز, وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, حمد کرنے والے, روزہ رکھنے والے, راہ حق میں سفر کرنے والے, رکوع اور سجدہ کرنے والے, نیک باتوں کی تعلیم دینے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے, اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے. ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے. تو دنیا میں بکاؤ چیز ہے اور خریدنے والے بہت ہیں. دیکھیے گا, لوگوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں. کچھ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں, یہ پیپل پلیزر ہوتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہے گا, خاندان کیا کہے گا, یہ پہن لیا تو دوستیں کیا کہیں گی, اس طرح کی سوچ رکھنے والے. دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اپنے نفس کے ہاتھوں بک جاتے ہیں. شرابی, چرسی, بھنگی, چور, ڈاکو, یعنی یہ اپنے نفس کی خرابیوں کا ہی شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں بکنے والے لوگ, یہ آپ اور میں ہیں. اس پہ یہ آیتوں کی تفسیر کا آپ کو لنک انشاءاللہ مل جائے گا, اس کو سنیے گا. بہت ہی عام فہم انداز میں اس میں ہم نے مختلف چیزوں کو دیکھا ہوا ہے. یہاں بس دیکھ لیجئے کہ ایک طرف ہے مومن اور ایک طرف ہے عذر اور بہانے کے فتنے میں مبتلا لوگ. مومن عذر اور بہانے نہیں بناتے, اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا, نتیجہ کامیابی ہے. اس کے برعکس عذر اور بہانے کے فتنوں میں مبتلا لوگ عذر اور بہانے بھی بناتے ہیں, اللہ کے راستے میں نکلتے بھی کوئی نہیں. اور زندگی کا مقصد دوسروں کو خوش کرنا ہوتا ہے, نتیجہ ناکامی ہے, اور اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں. نوٹ کیجئے گا کہ عذر اور بہانے میں مبتلا لوگوں کے رویے کیا ہوتے ہیں. پہلی بات ہے کہ عذر اور بہانے بنا کر نیکی سے دور ہو کر اللہ کا قرب نہیں پاتے. ملے گا قرب گھر بیٹھ کر؟ اور ماحول بنائے بغیر کسی چیز کو لینے سے وہ چیز تو نہیں ملتی جو ایک بڑے خوبصورت ماحول میں بنتی ہے. پھر ان کی زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں ہوتا. عظیمت کی بجائے فرائض کی سطح پہ جیتے ہیں, یعنی میڈیوکرز, مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں, یہ ہائی فائی لوگ نہیں ہوتے. دین کو سیکھنے اور نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. دین کے لیے قربانیاں, جان اور مال سے جہاد کرنا ان کے لیے بہت محال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. اس کے بعد آیت نمبر 113 میں ایک بہت ہی دو ٹوک قسم کا فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ کفر اور شرک کے ساتھ پھر مغفرت نہیں ہے. پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے, اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں, اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے ان سے کر لیا تھا. پھر جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے. واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بٹ بار تھے, اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر دلوں پہ ہے, وہ کبھی کسی کو ضائع نہیں ہونے دیتا. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان سچا مومن بھی ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کر بھی چکا ہو اور اس کی یہ ڈیل اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکی ہو چکی ہو, اس کے بعد پھر مومن اور کافر کا فرق اس کو نہ محسوس ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے تو وہاں کہہ دیا تھا فاستبشروا. ہو سکتا ہے کہ مومن کی آنکھ میں آنسو ہو مگر اس کا دل مطمئن رہے, اس دنیا میں دکھ ہو لیکن وہاں سکھ ہو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مومن جہاں خوش ہو اور آخرت میں اس پہ پکڑ ہو یا اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہو. تو ان خون کے رشتوں کے اوپر اللہ کے حکم کو ماننا تو پڑے گا. اور یاد رکھیے کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے جو مومن ہوتے ہیں وہ حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ شرک اور کفر کے ساتھ مرنے والوں کے ساتھ معاملہ ویسا ہی کرنے لگے جو کہ ایمان کی طرف آنے والوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صرف سرحدوں کی حفاظت کی دعوت نہیں دیتے, آئیڈیالوجی کی بھی دعوت دیتے ہیں. کفر اور شرک کو محسوس کرو, تم قرآن کی طرف آؤ تو صحیح, देखो तुम्हें कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अगर कुछ छोड़ोगे, तो उसके बाद अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कुछ देगा भी, क्योंकि बिला शुबा अल्लाह ही की सल्तनत है आसमानों जमीन में, वही जिंदा करता और मरता है। और तुम्हारा अल्लाह ताला के सिवा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार है। अल्लाह ताला ने पैगंबर के हाल पे तवज्जो फरमाई और महाजरीन और अंसार के हाल पर भी, जिन्होंने ऐसी तंगी के वक्त पैगंबर का साथ दिया। नोट कीजिएगा, सहाबा की जितनी तारीफें हैं ना, उसकी वजह ये थी, ये मुश्किल हालात के दोस्त थे, गुड टाइम फ्रेंड्स नहीं थे बल्कि बैड टाइम फ्रेंड्स भी थे। और जो आपका कभी ऐसे वक्त में साथ दे दे, आप कभी उसको भूलते हैं भला? तो अल्लाह ताला कैसे भूले उन लोगों की मेहनतें कि जिन्होंने दीन की इमारतें खड़ी की, जिन्होंने खंदकें खोदी, पसीने बहाए। आप भी अगर किसी जगह दीन की कॉज के इब्तदाई लोगों में हैं, तो आप भी उस चीज़ को जहन में रखिए कि अगर अल्लाह ने आपको उस वक़्त चुना, तो फिर ऐसा ना हो कि आप बाद में सुस्त हो जाएं और उस मेयार से नीचे उतर जाएं। इसके बाद कि इनमें से एक गिरोह के दिलों में कुछ तजलजुल हो चुका था, फिर अल्लाह ने इनके हाल पे तवज्जो फरमाई। बिला शुबा अल्लाह ताला इन सब पर बहुत शफीक और मेहरबान है। अब आगे हैं वो तीन लोग जिनका किस्सा, जिनके साथ लॉकडाउन किया गया, और तीन शख्सों के हाल पर भी जिनका मामला मुलतवी कर दिया गया था, यहाँ तक कि जब जमीन बावजूद अपनी फराखी के इन पर तंग होने लगी, जैसे आजकल कुछ लोगों को अपने घर छोटे लगने लग गए, और वो खुद अपनी जान से तंग आ गए, और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कहीं पनाह नहीं मिल सकती बजुज इसके किसी की तरफ रजू किया जाए, फिर इनके हाल पर तवज्जो फरमाई ताकि वो आइंदा भी तौबा कर सकें। बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और बड़ा रहम फरमाने वाला है। तो करो क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। क्या सीखा? 111 से 119, अल्लाह के महबूब के औसाफ। मुशरिकीन के लिए बख्शिश की दुआ मांगना जायज़ नहीं, अल्लाह ताला किसी को ज़बरदस्ती गुमराह नहीं करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम पर अल्लाह की नज़र करम थी। ग़ज़वे तबूक में अदम शिरकत पर नादिम होने वालों की बख्शिश का ऐलान किया गया, और तकवा हासिल करने के लिए जमात से जुड़ना ज़रूरी है। अकेला बंदा शैतान के हाथों में तर निवाला बन जाता है। और याद रखिए कि वो लोग जिनकी तौबा को डिले कर दिया गया था, ये मोमिन थे, गुनाहगार थे, मुनाफिक गुनाहगार नहीं थे। जो मोमिन गुनाहगार होता है ना, अल्लाह कोई बहाना बना लेता है और इनको बचा लेता है, डिली डाली का शिकार हुए। आज हमें भी इस लॉकडाउन से निकलने के लिए इज्तमाई तौबा की ज़रूरत है, और ये सीखा कि अमल में ताखीर नहीं करनी, ऐसा ना हो कि अल्लाह तौफीक छीन ले। पीछे क्यों रह गए थे ये लोग? कहते थे काफ़िला तो बहुत सारे लोगों को लेके चल रहा है, ऐसा ऐसा चलेगा, मेरी तो सवारी बड़ी तेज़ है, मैं ज़रा देर से भी निकल जाऊँ, ज़रा ये भी समेट लूँ, वो भी समेट लूँ, अभी ये भी वो भी, और इतने में फिर पीछे रह के। अल्लाह मुझे आपको कभी नेकियों से पीछे रहने वाला ना बनाए। मदीना के रहने वालों को और जो देहाती इनके गिर्दो पेश हैं, इनको ये ज़ेबा न था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर पीछे रह जाएं, और ना ये कि अपनी जान को इनकी जान से अजीज समझें। अबू खैसमा का वाक्य ऊपर सुन चुके हैं। ये सबब से कि इनको अल्लाह की राह में जो प्यास लगी, जो थकन पहुंची, जो भूख लगी, और जो किसी ऐसी जगह चले जो कुफार को गुस्सा दिलाने का सबब हो, और दुश्मनों की जो कुछ खबर ली, इन सब पर इनके नाम एक एक नेक काम लिख दिया गया। अल्लाह नहीं जाया करता, एक नुक्ता भी लगाते हैं ना, अल्लाह उसको भी लिख लेता है। और जो कुछ छोटा बड़ा उन्होंने खर्च किया और जितने मैदान इनको तय करने पड़े, ये सब भी इनके नाम लिखा गया ताकि अल्लाह ताला इनके कामों का अच्छा बदला दे। अल्लाह ताला आप सबको भी अच्छे अच्छे कामों के अच्छे बदले दे। तो क्या पता चला कि अल्लाह कोशिशों को देखता है, कमी बेशी तो रहेगी। तकवा के लेंस से दुनिया को देखेंगे तो आपको एक नई दुनिया दिखेगी। अब आगे इल्मी जिहाद की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, क्योंकि दूसरे जिहाद में हर एक तो नहीं जाएगा, और आज के दौर की ज़रूरत यही जिहाद है, और मुसलमानों को ये नहीं चाहिए था कि सब के सब निकल खड़े हों। सो ऐसा क्यों ना किया जाए कि इनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे, ताकि वो दीन की समझ बूझ हासिल करें, और ताकि ये लोग अपनी कौम को जबकि वो इनके पास आएँ डराएँ, और ताकि वो डर जाएँ। यही आपका मेरा गोल होना चाहिए। आप देखिए कि इल्म आ जाता है ना, तो अमल की तलब भी जागती है। हज़रत उमर के दौर में हर 20 घरों में से एक घर मदरसा था। उबई बिन काब कहते हैं कि जिस तरह बच्चों को कुरान हिफ्ज़ कराते हो, उनको अरबी ज़ुबान का फहम भी दो, क्योंकि इससे अमल अच्छा होगा। और याद रखिए कि आप 100 नफिल पढ़ें और समझ नहीं रहे और गलत सलत पढ़ रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप एक आयत का फहम हासिल कर लें। आज के दौर की ज़रूरत है घर घर से लोग निकलें, दीन सीखें, तजर्बे करें, और उसके बाद फिर उसको लेकर अपने अपने इलाकों में फैल जाएं, चाहे कच्ची बस्तियों में जाना पड़े या आपको डिफेंस और क्लिफ्टन में जाना पड़े। अब सूरत के आखिरी खात्मे की आयतें हैं जिसमें वाकई ऐसे लग रहा है कि ये मौजूद दोबारा एक दफ़ा सामने खोला जा रहा है कि अगर अभी भी इस्लाम में जिहाद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मज़ीद बात सुन लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन कुफ्फार से लड़ो जो तुम्हारे पास हैं, और इनके लिए तुम्हारे अंदर सख्ती होनी चाहिए, और ये यकीन रखो कि अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो बाज़ मुनाफिकीन कहते हैं, इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान को ज़्यादा किया है, यानी मजाक करते थे। सो जो लोग ईमानदार हैं इस सूरत ने इनके ईमान को ज़्यादा किया है और वो खुश हो रहे हैं। बारिश कचरे के ढेर पे आएगी तो बदबू उठेगी, फूलों की क्यारी पे आएगी तो खुशबू बनेगी। यही मोमिन और मुनाफिक के कुरान पढ़ने का फ़र्क है। और जिनके दिलों में रोग है, इस सूरत ने इनमें इनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा दी और वो हालत कुफर ही में मर गए। और क्या इनको नहीं दिखाई देता कि ये लोग हर साल एक बार या दो बार किसी न किसी आफत में फंसते रहते हैं, फिर भी न तौबा करते और न नसीहत कबूल करते हैं। बोलिए अल्लाह, हम इन हालात में तौबा करते हैं, हम में से हर एक के जिस जिस गुनाह की ये सज़ा है तो इसको माफ़ कर दे। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तुमको कोई देखता तो नहीं, फिर चल देते हैं। मुनाफिक का दिल इल्म की महफिल में नहीं लगता, वहां पहुंच कर भी दिल नहीं लग रहा क्योंकि अमल पे चोट पड़ती है। उसको लगता है हर आयत मेरे बारे में, ये मुझे सुनाया जा रहा है, ये मेरी बातें हैं, ये फलां हैं, ये ऐसी बातें। तो अल्लाह ताला इनके एक्शंस को बयान करते हुए कह रहे हैं, कनखियों से एक दूसरे को देखते हैं, ये तुम्हारी बातें हो रही हैं। फिर जब जाहिर है कि फेस नहीं कर सकते, फिर चल देते हैं। अल्लाह ने इनका दिल फेर दिया इस वजह से कि वो बेसमझ लोग हैं। तो याद रखिए कि इल्म की महफिल में बिठा दिया जाना बहुत बड़ी खुशबख्ती है। अगर आप और मैं इसमें बैठकर भी अपना दिल इसमें ना पाएं तो रोने की ज़रूरत है। होता क्या है कि जब इंसान दीन की महफिल में आता है ना, तो दिल के ऊपर से क्रस्ट उतरता है, अल्लाह का कलाम ऊपर का वो सख्त क्रस्ट जो दुनिया की मोहब्बत का और नफ्स के फितनों का होता है, उसको उतारता है। फिर अंदर से एक बड़ा प्यारा मासूम सा दिल आता है। फिर मुसलमान वाकई हर नेकी को एक अपॉर्चुनिटी समझता है हर रोज़ कुरान की महफिल में। इसके बरक्स मुनाफिक का दिल नहीं लगता, इधर देखता है उधर देखता है। और जिसका अल्लाह की महफिल में पहुँच कर दिल ना लगे वो महरूमी है, नमाज में अल्लाह याद ना आए तो महरूमी है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर अलग कर देता है, और बस दफ़ा अल्लाह ताला ऐसी आजमाइशों में डालकर भी पाक करता है कि अब बताओ तुम किधर जाते हो। इल्म की महफिल में गम लगा रहता है, हाय ये तुम्हारी बातें, हमारे पोल ना खुल जाएं और ये और वो। तो अल्लाह कहते हैं, देखो तुम्हारा उस्ताद कौन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नोट कीजिएगा, आपकी प्यारी खूबियों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से रियायत है। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनिततुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए हैं जो तुम्हारी जिन्स से हैं, जिनको तुम्हारे नुकसान की बात नहायत गिरां गुजरती है, जो तुम्हारे फायदे के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं, ईमानदारों के साथ बड़े शफीक और मेहरबान हैं। फिर अगर रूगरदानी करें तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने इसी पे भरोसा किया, और वह बड़े अर्श का मालिक है। क्या पता चला कि अल्लाह के नबी की तुमसे हिर्स है, तुमसे प्यार है, जो तुम्हें बार बार बुलाते हैं, लेकिन तुम ऐसे सख्त और स्टबन हो कि तुम्हें इस चीज़ की कदर ही नहीं। तो क्या पता चला कि जब तक दिल में हिर्स ना हो ये काम नहीं होता। तो आयत 120 से 129 तक देखिएगा, अल्लाह के नबी की अपनी उम्मत से मोहब्बत देखी, इल्म दीन सीखने की अहमियत, इस्लामी इनकलाब की तौसी कैसे मुमकिन है, कुरान की तासीर मोमिनों पर कुछ और मुनाफिकीन पर कुछ और मुनाफिकीन के लिए बार बार जिल्लत, और अल्लाह ही काफ़ी, हस्बी अल्लाह। कहिए हस्बी अल्लाह, यही आखिरी आयत देखिए हदीस में भी आता है कि सुबह शाम 7 दफ़ा पढ़ने वाले के गम और हम इवन दुनिया और आखरत दोनों के अल्लाह ताला लेते हैं। अल्लाह ताला हमारे सब गम ले ले और हमें काफ़ी हो जाए। आगे है सूरत यूनुस, आपको अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ लगेगा सूरत तौबा और अनफाल से। ख़ास तौर पे अन्नास का लफ्ज़ बार बार आएगा, कुरान के बारे में मक्का वालों का जो मुतालबा था और आज के दौर में जो कुरान पे हमले हैं उसका तذकरा आएगा। और आप देखेंगे कि इस सूरत को पढ़ते वक्त आपके दिल में ये ख्वाहिश आएगी कि अल्लाह इस किताब को कभी मेरे हाथों से ना लेना, और 109 आयतें हैं। कौम यूनस की तौबा थी, शायद इसी वजह से इसमें हज़रत यूनस के नाम पे है, और अम्बिया कराम के नाम से मौसूम सूरतों में से ये एक पहली सूरत हमारे सामने है। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम रा, ये पुरहिकमत किताब की आयतें हैं। क्या इन लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने इनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी कि सब आदमियों को डराए और जो ईमान ले आए, इनको ये खुशखबरी सुनाई है कि इनके रब के पास इनको पूरा अजर और मर्तबा मिलेगा। काफिरों ने कहा, यह शख्स तो बिला शुबा सरीख जादूगर है। क्या पता चला, दुनिया में अगर तुम्हारी किसी खूबी का इतराफ नहीं किया गया, अल्लाह ताला तुम्हें देगा और तुम्हें उसका एक एक बदला मिलेगा। फिर आप देखिए, किताब के लिए हकीम का लफ्ज़ है। ये किताब आपको हिकमतें सिखाती है, हुक्म भी है, हाकिम भी है, सही वक्त पे सही तरीके पे सही काम करना, ये हिकमत कुरान पढ़ने के बाद ही आती है। और कदम सिदकिन क्या है, वही सच जिसका पीछे तस्करा पढ़ के आए हैं कि कूनू मा सादिकीन। अल्लाह ताला आपको मुझे ये अता फरमा दे और इस किताब का हक अदा करने की तौफीक दे। बिलाशुबा तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 रोज़ में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर कायम हुआ। वो हर काम की तदबीर करता है। तुम्हारा रब है, पस तुम इसकी इबादत करो। क्या तुम फिर भी नसीहत नहीं पकड़ते? मुहासबा करते हैं हम सब अपना। तुम सब को अल्लाह ही के पास जाना है। अल्लाह ने सच्चा वादा कर दिखाया है। बेशक वही पहली बार भी पैदा करता है, फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा, ताकि ऐसे लोगों को जो कि ईमान लाए और उन्होंने नेक काम की इंसाफ के साथ जजा दे, और जिन लोगों ने कुफर किया, इनके वास्ते खौलता हुआ पानी पीने को मिलेगा और दर्दनाक अजाब होगा इनके कुफर की वजह से। आज अगर इसका यकीन हो जाए ना, तो हम सीधे हो जाए, उबलता पानी सर में पड़े तो सारी अकल की कमियां बेशियां दूर हो जाएं। वो अल्लाह ताला ऐसा है जिसने आफताब को चमकता हुआ बनाया और चांद को नूरानी बनाया और इसके लिए मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम करो। कुरान में दुनियावी हिसाब किताब की भी बात है और दीन के भी। कह लीजिए कि कुरान इल्म दोस्त है, तो फिर आज का मुसलमान क्यों जाहिल है? सोचने की बात है। अल्लाह ताला ने ये चीजें बेफायदा पैदा नहीं की, वो ये दलाइल इनको साफ साफ बतला रहा है जो के दानिश रखते हैं। बिलाशुबा रात और दिन के यके बदीगरे आने में और अल्लाह ने जो कुछ आसमान और जमीन में पैदा किया है, इन सब में इन लोगों के वास्ते दलाइल हैं जो अल्लाह का डर रखते हैं। कितने खूबसूरत तरीके से कायनात चल रही है। जिन लोगों को हमारे पास आने का यकीन नहीं, ये अंदाज आपको इस सूरत में बार बार मिलेगा। क्यों रूठे रूठे रहते हो, क्यों पीछे रहते हो? एक दिन तो सामने आओगे ना, उस दिन क्या बनेगा? तो ला यरजूना लिका अना। अल्लाह ताला हमें अपनी मुलाकात का यकीन दिला दे। और वो दुनिया की जिंदगी पर राजी हो गए हैं और इसमें जी लगा बैठे हैं, सोचिएगा। और जो लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं, ऐसे लोगों का ठिकाना इनके अमल की वजह से दोजख है। तो देखिएगा आयत 6 और 7 में क्या सीखा, उजर और बहाने के फितने में मुबतला गाफिल लोग कैसे होते हैं। मकसद और हदफ यानी गोल सिर्फ दुनिया दुनिया और दुनिया होती है। अल्लाह की मुलाकात का यकीन नहीं होता, रब की निशानियों पे गौर व फिक्र नहीं करते, दुनिया की जिंदगी पे राजी और मुतमईन है, अमाले साले करना भारी लगता है, सुख और दुख में मुख्तलिफ रवैया होता है, खुद को बदलना नहीं चाहते। अल्लाह ताला में इसकी रूह में ना शामिल करें। अब तो मुझे लगता है हमारा दिल खुद ही हमें बता देता है, किसी किस्म की तफसील और डिटेल की ज़रूरत नहीं होती। इसके बरक्स यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, इनका रब इनको इनके ईमान के सबब इनके मकसद तक पहुंचा देगा, नेमत के बागों में जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। क्या पता चला कि अगर दिल सच्चा हो, अकीदा दुरुस्त हो ना, तो भटक भी जाए ना इंसान, तो अल्लाह ताला बिल आखिर उसको राह दिखा देता है। अल्लाह आज भी इर्द गिर्द के भटके हुओं को हमारे समेत हिदायत दे दे। जब जन्नत में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? बड़ा प्यारा जुमला है, दावाहुम फीहा सुभानकल्लाहुम्मा। इनके मुंह से बात निकलेगी सुभान अल्लाह, और इनका बाहमी सलाम ये होगा अस्सलामु अलैकुम, और इनकी आखिरी बात ये होगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है। दुनिया में भी दिल में अल्लाह की हम्द और तस्बीह थी, वहां जाकर भी मुंह में यही निकलेगा। तो मुस्लिम ग्रीटिंग सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अस्सलामु अलैकुम है। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को इसका आदी रखे। और अगर अल्लाह लोगों पर जल्दी से नुकसान वाकई कर दे, या कर दिया करता, जिस तरह वो फायदे के लिए जल्दी मचाते हैं, तो इनका वादा कभी का पूरा हो चुका होता। बस हम इन लोगों को, जिनको हमारे पास आने का यकीन नहीं, इनके हाल पर छोड़े रखते हैं कि ये अपनी सरकशी में भटकते रहे। यकीन किसको नहीं है जिसको ये दुनिया ही नहीं छोड़ती। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमको पुकारते, लेटे भी, बैठे भी, खड़े भी, मजे इम्तिहान और रिजल्ट के दिनों में। फिर जब हम इसकी तकलीफ इससे हटा देते हैं तो ऐसा हो जाता है गोया कि इसने अपनी तकलीफ के बावजूद, जो इसे पहुंची थी, हमें कभी पुकारा ही नहीं था। इन हद से गुजरने वालों के अमाल को इनके लिए इसी तरह खुशनुमा बना दिया जाता है। और हमने तुमसे पहले बहुत से गिरोहों को हलाक कर दिया जबकि उन्होंने जुल्म किया, हालांकि इनके पास इनके पैगंबर भी दलाइल लेकर आए, और वैसे कब थे कि ईमान ले आते। हम मुजरिम लोगों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। फिर इसके बाद हमने दुनिया में बजाय इनके तुमको जानशीन किया। तारीख की झलकियां दिखाई जा रही हैं ताकि हम देख लें, क्या देख लें, कि तुम किस तरह काम करते हो। तो आप और मैं आजकल नजरों में हैं, और जब इनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं जो बिल्कुल साफ साफ हैं, तो ये लोग जिनको हमारे पास आने की उम्मीद नहीं, यूं कहते हैं, इसके सिवा कोई दूसरा कुरान लाइए या इसमें कुछ तरमीम कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं कह दीजिए, मुझे ये हक नहीं कि मैं अपनी तरफ से इसमें कोई तरमीम कर दूं, बस मैं तो इसकी पैरवी करूंगा जो मेरे पास वही के जरिए से पहुंचा है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मैं एक बहुत बड़े दिन के अजाब का अंदेशा रखता हूं। या यूं कह दीजिए कि अगर अल्लाह को मंजूर ना होता तो ना मैं तुमको पढ़कर सुनाता और ना अल्लाह तुमको इसकी इत्तला फरमाता, क्योंकि मैं इससे पहले तो एक बड़े हिस्से उम्र तक तुम में रह चुका हूँ। फिर क्या तुम अक्ल नहीं रखते? ये मुतालबा कल भी था, ये आज भी है कि ईती कुरानी भी गैरी हाजा, कुरान का डाइल्यूटेड वर्जन पेश करो, इसको एक नया रंग दो, दौरे हाजिर के मुताबिक कुरान कैसा होना चाहिए। और वेस्ट में एक बुक छपी उर्दू में जिसका मतलब क्या है कि किस किस्म का इस्लाम वेस्ट चाहता है, यानी उन्होंने कहा किस किस्म का इस्लाम वेस्ट को पसंद है। आप उनको बताइए कि किस किस्म का वेस्ट इस्लाम चाहता है। बात यह है कि अल्लाह का कलाम समझ कर इसको सुनेंगे तो फिर अपनी मर्जी की बातें इसमें ऐड नहीं होंगी। बात यही है कि जितना ज़्यादा मुसलमानों ने इस किताब पे अमल छोड़ा, गैरों को ये कहना पड़ा, यानी एक जुमला है अगर आप चाहें किसका है तो मैं आपको उसका नाम भी दे सकती हूँ, कहता है द बेस्ट बुक विद द वर्स्ट फॉलोअर्स। अल्लाह ताला हमारी वजह से कुरान को बातें ना सुनवाएं। आज हम किस तरीके से इस किताब को दुनिया में प्रेजेंट कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे इस जुर्म को माफ़ करे और हमें अपनी इसलाह की तौफीक अता फरमाए। बस इस शख्स से ज़्यादा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे या इसकी आयतों को झूठा बतलाए। यकीनन ऐसे मुजरिमों को असलन फलाह ना होगी, और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना इनको ज़रर पहुँचा सकें और ना इनको नफ़ा पहुँचा सकें, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारशी हैं। आप कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज़ की खबर देते हो जो अल्लाह को मालूम नहीं, ना आसमानों में ना ज़मीन में, वो पाक है और बरतर है इन लोगों के शिर्क से। और शिर्क फैलता क्यों है जब इंसान किताब से दूर भागता है? कुरान पढ़ने के बाद लाइफस्टाइल बदलना पड़ता है, ये लोगों को पसंद नहीं। कुफारे मक्का कुरैश को रिजिट कहते थे, आज भी लोग यही कहते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसा कहने वाले क्रिमिनल्स भी हैं और सिनर्स भी हैं, ज़रूरत है कि इस किताब को एज इट इज़ मानो, ये फिट टू ऑल है। लोग कहते हैं काटो पाड़ो, इधर से टेलर मेड कर दें, ये भी निकाल दें, सूरह तौबा तो होनी नहीं चाहिए, और ऐसा कर ले, और बस फजीलतें और रिवायतें और कहावतें। अल्लाह ताला आपको मुझे इस किताब पर मनवान अमल करने की तौफीक दें। और तमाम लोग एक ही उम्मत के थे, फिर उन्होंने इख्तलाफ पैदा किया, क्या पता चला कि इंसानियत का आगाज इत्तेहाद से था, इख्तलाफ से नहीं। और अगर एक बात ना होती जो आपके रब की तरफ से पहले ठहर चुकी है, तो जिस चीज़ में ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं इनका कतई फैसला हो चुका होता। और ये लोग यूं कहते हैं कि इन पर इनके रब की जानिब से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं होती? आप फरमा दीजिए, गैब की खबर सिर्फ अल्लाह को है, बस तुम भी मुंतजिर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो 1 to 19 आयात में क्या देखा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसान होने पर हैरत होती थी उन लोगों को, अल्लाह सुबहान तआला की सिफात आलिया का बयान देखा, भले और बुरे का इंजाम देखा, बशरी कमजोरियों का तذکرہ था, और कुरान को बदलने का मुतालबा, और शिफाते बातिला का मन घड़त अकीदा। ऐसे ही लोगों से एक और बात कही जा रही है कि जो इस किताब को पढ़ने बैठे और अल्लाह ताला की रहमत उनको नहीं दिखती, और वो कैसे, वईजा जक्न नास रहमत मिम्बा दी दर्रा, और जब हम लोगों को इस अमर के बाद किन पर कोई मुसीबत पड़ चुकी हो, किसी नेमत का मजा चखा देते हैं, तो वो फौरन ही हमारी आयतों के बारे में चालें चलने लगते हैं। अल्लाह ना करे कि लॉकडाउन से निकलने के बाद फिर गुनाह के सब अड्डे वैसे ही भर जाएं जैसे इससे पहले थे। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला चाल चलने में तुमसे ज्यादा तेज है, बिल यकीन हमारे फरिश्ते तुम्हारी सब चालों को लिख रहे हैं। वल्ला ऐसा है कि तुमको खुश्की और दरिया में चलाता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में सवार होते और वो कश्तियाँ लोगों को मुवाफिक हवा के जरिए से ले चलती हैं, वो लोग इनसे खुश होते हैं। इन पर एक झोंका सख्त हवा का आता है और हर तरफ से इन पर मौजें उठती चली आती हैं, और वो समझते हैं कि बुरे आ घिरे। इस वक्त सब खालिस एतकाद करके अल्लाह ही को पुकारते हैं कि अगर तू हमको इससे बचा ले तो हम जरूर शुक्रगुजार बन जाएंगे। मुश्किलात में फितरत पे पड़ा हुआ पर्दा हट जाता है, इसीलिए इंसान इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है। लेकिन होता क्या, इसको अपनी जिंदगी पे लेकर देखें कि जब मुश्किल चली जाती है तो अमूमन अक्सर लोगों का हाल क्या होता है, फलम मान जा हम, फिर जब अल्लाह तआला इनको बचा लेता है तो फौरन ही वो जमीन में नाहक सरकशी करने लगते हैं, ट्रांसग्रेशन, रिबेलियसनेस। या यूहन्नास, ए लोगो, ये तुम्हारी सरकशी तुम्हारे ही लिए वबाल होने वाली है। दुनियावी जिंदगी के चंद फायदे हैं, फिर हमारे पास तुमको आना है, फिर हम सब तुमको किया कराया दिखा देंगे, फिर हम सब तुम्हारा किया हुआ तुमको बतला देंगे। बस दुनियावी जिंदगी की हालत तो ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर इससे जमीन की नबातात उगी। जरा सा इसको लाइफ स्पैन के साथ सोचिएगा, कैसे बचपन जवानी में और जवानी बुढ़ापे में ढलती है, फिर जो आके जाती ही नहीं है। तो सब्जा उगता है कब, जब बारिश आती है। जिनको आदमी और चौपाए खाते हैं खूब गुंजान होकर निकली, यहाँ तक कि जब वो जमीन अपनी रौनक का पूरा हिस्सा ले चुकी और इसकी खूब ज़िबाइश हो गई और इसके मालिकों ने समझ लिया कि अब हम इस पर बिल्कुल काबिज हो चुके हैं, तो दिन में या रात में इस पर हमारी तरफ से कोई अजाब आ जाता है, यानी अल्लाह का हुक्म आता है, बस हमने इसको ऐसा साफ कर दिया गोया कल वो मौजूद ही ना थी। हम इसी तरह आयात को साफ साफ बयान करते हैं ऐसे लोगों को जो सोचते हैं। इस पर एक लेक्चर था दावा सीडी में, लाइफ इज अ फेडिंग शेडो, जिंदगी एक ढलता साया, उसका लिंक इंशाल्लाह लगा देंगे। बहुत ही लाइट सा और सॉफ्ट सा लेक्चर है, खास तौर पे नए लोगों को इस्लाम और दीन की तरफ लाने के लिए, उससे फायदा उठाया जा सकता है। वल्लाहु यदु इला दारिस सलाम, और अल्लाह ताला सलामती के घर की तरफ तुमको बुलाता है और जिसको चाहता है राह रास पर चलने की तौफीक देता है। जिन लोगों ने नेकी की है इनके वास्ते खूबी है और मजीद बरां भी, इनके चेहरों पर ना स्याही छाएगी ना जिल्लत, ये लोग जन्नत में रहने वाले हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह हमारा नाम इन लोगों में लिख ले, तो क्या पता चला कि उजर बहाने के फितने में मुब्तला लोगों को रब की पुकार, क्या उजर बहाने करके रब से भागने की बजाय रब की तरफ भागो, फिर सिराते मुस्तकीम पर चलने की दावत और जन्नत से ज्यादा अल्लाह तला के दीदार की खूबी, कैसे, लिल्लज़ीन अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, ये अल्लाह तआला के चेहरे के दीदार की तरफ इशारा है। रिवायत है तिरमिज़ी की 2552, अल्लाह के नबी ने इस आयत पर जो भी हमने पढ़ी 26 फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो एक पुकारने वाला पुकारेगा, अल्लाह से तुम्हें एक और चीज़ मिलने वाली है। वो कहेंगे क्या, यानी खुश होंगे, अभी और भी रहता है, जैसे बच्चों को गिफ्ट्स मिल भी जाए और आपके अभी कुछ और भी है पुप्पो के पास, तो बच्चे बेचैन होते हैं ना, वही अंदाज है। जन्नती कहेंगे क्या अल्लाह ने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया, हमें जहन्नुम से निजात नहीं दी और हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया। वो कहेंगे क्यों नहीं, फिर हिजाब उठ जाएगा। आपने फरमाया अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने इन्हें कोई ऐसी चीज नहीं दी जो इनके नजदीक अल्लाह ताला के दीदार से ज्यादा महबूब हो। अल्लाह हमें भी अपने चेहरे का दीदार करवाना। इसके बरक्स और जिन लोगों ने बदकाम किए, इनकी बदी की सजा इनके इसके बराबर मिलेगी और इन पर जिल्लत छाएगी, इनको अल्लाह ताला से कोई न बचा सकेगा, गोया इनके चेहरों पर अंधेरी रात के परत लपेट दिए गए, ये लोग दोजख में रहने वाले हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। और वो दिन भी काबिले जिक्र है जिस रोज हम इन सब को जमा करेंगे। ये सारी चीजें ना खास तौर पर सूरत में देखिए विजुअलाइज करने वाली है, इसमें समझने वाली बात नहीं है, महसूस करने वाली है। तो आप अपने आप को मैदान महशर में महसूस करें, वहां ये सब कुछ हो रहा है, सबको जमा किया जाएगा। फिर मुश्रिकीन से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह ठहरो, स्टॉप हेयर, फिर हम इनकी आपस में फूट डाल देंगे। कुफर और बातिल पे जो इत्तेहाद होते हैं ना, वो ज्यादा दिन निपते भी नहीं है। और इनके वो शुरका कहेंगे, क्या तुम हमारी इबादत नहीं करते थे? सो हमारे तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफी है गवाह के तौर पर कि हमको तुम्हारी इबादत की खबर भी ना थी। वो इनकार कर रहे हैं, देखिए जो नेक लोग चले गए, आज लोग उनकी कब्रों पे जाकर जो मच करें, या आयत नोट कीजिए कि वो कहेंगे हमने कब कहा था। इस मुकाम पर हर शख्स अपने अगले किए हुए कामों की जांच कर लेगा, और ये लोग अल्लाह ताला की तरफ, जो इनका मालिक हकीकी है, लौटाए जाएंगे, और जो कुछ झूठ बांधा करते थे इन सब से गायब हो जाएंगे। कोई करने वाला, कोई हाथ थामने वाला वहां नहीं होगा। आप कहिए, वो कौन है जो तुमको आसमानों जमीन से रिस्क पहुंचाता है? या वो कौन है जो कानों और आंखों पर पूरा इख्तियार रखता है? और वो कौन है जो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है? और वो कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है? जरूर वो यही कहेंगे कि अल्लाह। तो इनसे कहिए, फिर क्यों नहीं डरते? क्या हम अल्लाह से डरते? सो ये है अल्लाह ताला तुम्हारा रब्बे हकीकी, फिर हक के बाद और क्या रह गया बजुस गुमराही के? फिर कहाँ फिरे जाते हो? क्या पता चला, एक दफा आप हाईवे छोड़ दीजिए हिदायत की, तो फिर या तो गुमराही इधर की पड़ेगी या उधर की पड़ेगी। इसी तरह आपके रब की ये बात कि ये ईमान न लाएंगे तमाम फासिक लोगों के हक में साबित हो चुकी है। ऐसे लोग अल्लाह ताला की इस पकड़ में आ चुके हैं। आप यूं कहिए, क्या तुम्हारे शुरका में कोई है जो पहली बार पैदा करे फिर दोबारा भी पैदा करे? आप यूं कहिए कि अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है फिर वही पैदा करेगा दोबारा भी? तुम कहाँ फेरे जाते हो? तुम्हारी मत क्यों मारी जाती है? याद रखिए कि मुशरिक की मत मारी जाती है। उसको सब समझ आएगा, इंटेलेक्चुअल होगा, वैसे करेगा, दुनिया के कलाबे मिलाएगा, लेकिन उसको ला इलाहा इल्लल्लाह समझ नहीं आएगा। आप कहिए कि तुम्हारे शुरका में कोई ऐसा है कि हक का रास्ता बताता हो? आप कह दीजिए, बार बार ये आपका कहना क्या बताता है कि ये कुरान अल्लाह के नबी ने खुद नहीं लिखा? आप कह दीजिए कि अल्लाह ही का हक रास्ता बताता है, अल्लाह ही हक का रास्ता बताता है। तो फिर आया जो शख्स हक का रास्ता बताता हो वो ज्यादा इत्तबा के लायक है, या वो शख्स जिसको बगैर बताए खुद ही रास्ता ना सूझे? आप बताइए, कहीं जा रहे हो तो जिस सीधे रास्ते पे नेविगेटर से चल रहे आप उसके पीछे चलेंगे, या बार बार यू टर्न लेकर इधर से उधर जाने वाले के पीछे? अफसोस है कि अमली जिंदगी में हम अक्सर दूसरे रास्ते पे चलते हैं। बस तुमको क्या हो गया, तुम कैसे फैसले करते हो? और इनमें से अक्सर लोग सिर्फ गुमान पर चल रहे हैं। यकीनन गुमान हक की मार्फत में कुछ भी काम नहीं दे सकता। ये जो कुछ कर रहे हैं यकीनन अल्लाह को सब की खबर है। तो क्या देखा इन आयात में, 20 से 39 फरमाइशी मौजज़े दिखलाने का मुतालबा करते थे लोग। दुनिया की जिंदगी खेती की तरह, आज बीज डालिए फसल वहां उगेगी। मुशरिकीन के लिए औलिया अल्लाह का कोरा जवाब कि हमारी तो नहीं करते थे, हमने कब कहा था कि हमारी कब्रों पे जाके सजदे करो और मन्नतें मांगो? अल्लाह की राह ही सलामती की राह है, और इंसान के एहसान फरामोशी है कि वो अल्लाह को छोड़कर गैरों के दर पे जाता है, और सोच पर मजबूर कर देने वाले सवालात। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें शऊर दे दे। अब कुरान पाक की बात आती है, और ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह की वही के बगैर अपने ही से घड़ लिया गया हो, बल्कि ये तो उन किताबों की तस्दीक करने वाला है जो इससे कबल नाजिल हो चुकी, और अहकाम ज़रूरिया की तफसील बयान करने वाला है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि रब्बुल आलमीन की तरफ से है। कितना प्यारा सोर्स है इस कुरान का। क्या ये लोग यूं कहते हैं कि आपने खुद इसको घड़ लिया है, फैब्रिकेटेड? आप कह दीजिए कि फिर तुम इसके मिसल एक ही सूरत लाओ, और जिन जिन गैर अल्लाह को बुला सको बुला लो अगर तुम सच्चे हो, बल्कि ऐसी चीज को छुटलाने लगे जिसको अपने हाथ इल्मी में नहीं लाए, और हनूज इनको इसके अखीरी अंजाम का भी नहीं मिला, यानी इनको पता ही नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। जो लोग इनसे पहले हुए हैं इसी तरह उन्होंने भी छुटलाया था, सो देख लीजिए इन जालिमों का अंजाम क्या हुआ। इनमें से बाज ऐसे हैं जो इस पर ईमान ले आएंगे, अल्लाह हमें उनमें शामिल कर ले, और बाज ऐसे हैं जो इस पर ईमान नहीं लाएंगे, और आप कर अब फसाद करने वालों को खूब जानता है। और अगर आपको झुटलाते रहें तो ये कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा अमल, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, तुम मेरे अमल से बरी हो और मैं तुम्हारे अमल से बरी हूँ। कितनी वाज़े आयत है, क़यामत के दिन भी नबी यही कह देंगे। और इनमें से बाज़ ऐसे हैं जो आपकी तरफ कान लगाए बैठे हैं, क्या बहरों को सुनाते हैं गो इनको समझ भी ना हो, और इनमें बाज़ ऐसे हैं कि आपको देख रहे हैं फिर क्या पंदों को रास्ता दिखलाना चाहते हैं गो इनको बसीरत भी ना हो। ये यकीनी बात है अल्लाह ताला लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग खुद अपनी ही जानों पर जुल्म करते हैं। और इनको वो दिन भी याद दिलाइए जिसमें अल्लाह इनको अपने हजूर जमा करेगा, तो इनको महसूस होगा गोया वो दुनिया में सारे दिन के एक आध घड़ी ही रहे होंगे, और आपस में एक दूसरे को पहचानने को ठहरे होंगे। वाकई खसारे में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह के पास जाने को झुठलाया और वो हिदायत पाने वाले न थे। अब क्या फ़ायदा, वक्त तो गुजर गया। तो उजर और बहाने के फितने में मुबतला लोगों को अल्लाह ताला की क्या नसीहतें हैं? पहली बात है कि बहाने बनाकर हिदायत के रास्ते से रुकना खुद पर जुल्म है। दुनिया की जिंदगी की हकीकत सिर्फ एक घड़ी लगेगी क्यामत के दिन, बस एक घड़ी ठहरे, और अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता। अब फैसला हमने खुद करना है, और जिसका हम इनसे वादा कर रहे हैं इसमें कुछ थोड़ा सा अगर हम आपको दिखला दें या हम आपको वफात दे दें, सो हमारे पास तो इनको आना ही है। फिर अल्लाह ताला इनके सब अफाल पर गवाह है और हर उम्मत के लिए एक रसूल है। सो जब इनका वो रसूल आ चुकता है, इनका फैसला इंसाफ के साथ किया जाता है और इन पर जुल्म नहीं किया जाता। और ये लोग कहते हैं कि ये वादा कब होगा? अगर तुम सच्चे हो, आप फरमा दीजिए कि मैं अपनी जात के लिए किसी नफे का और किसी जरर का इख्तियार रखता ही नहीं, मगर जितना अल्लाह को मंजूर हो। हर उम्मत के लिए एक मुअय्यन वक्त है, जब इसका वो मुअय्यन वक्त आ पहुंचता है तो एक घड़ी ना पीछे हट सकते हैं और ना आगे सिरक सकते हैं। तो हमारी आपकी मौत का वक्त भी मुकर्रर है। आप फरमा दीजिए, ये तो बतलाइए कि अगर तुम पर अल्लाह का अजाब रात को आ पड़े या दिन को, तो अजाब में कौन सी चीज ऐसी है कि मुजरिम लोग इसको जल्दी मांग रहे हैं? क्या फिर जब वो आ ही पड़ेगा इस पर ईमान लाओगे? क्या फायदा, जब जहाज के दरवाजे बंद हो रहे हैं तो तब एयरपोर्ट जाओगे? हाँ, अब माना, हालांकि तुम इसकी जल्दी मचाया करते थे, बस जालिमों से कहा जाएगा कि हमेशा का अजाब चखो, तुमको तो तुम्हारे किए का ही बदला मिला है। और वो आपसे दरियाफ्त करते हैं कि अजाब वाकई सच है, यकीन नहीं आ रहा ना, तो यही कहेंगे। आप फरमा दीजिए, हाँ कसम है मेरे रब की, वो वाकई सच है और तुम किसी तरह अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। और अगर हर जान जिसने जुल्म यानी शिर्क किया है इसके पास इतना हो कि सारी जमीन भर जाए तब भी इसको देकर अपनी जान बचाने लगे, और जब अजाब को देखेंगे तो पशेमानी को पोशीदा रखेंगे, और इनका फैसला इंसाफ के साथ होगा और इन पर जुल्म ना होगा। क्या फायदा, उस दिन सारी दौलत दुनिया में रह गई और वहां जवाबदेही है। याद रखो कि जितनी चीजें आसमानों में और जमीन में हैं सब अल्लाह ही की मलकियत हैं। अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, लेकिन बहुत से लोग इल्म नहीं रखते। देखिए, इल्म इल्म और इल्म, वही जान डालता है वही जान निकालता है। तुम सब इसी के पास लाए जाओगे। या यूहन्नास, ये है नूरुल कुरान की थीम आयत भी। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, मेन वेबसाइट NURULQURAN.com, तो आप उसके मेन स्लोगन पे ये आयत दिखेंगे। या यूहन्नास, ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज आई है जो नसीहत है, और दिलों में जो रोग हैं इनके लिए शिफा है और रहनुमाई करने वाली है और रहमत ईमान वालों के लिए। आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह के से नाम और रहमत पर खुश होना चाहिए जो इससे कई दर्जे बेहतर है जिसको वो जमा कर रहे हैं। इस पे एक लेक्चर है, इंशाल्लाह आपके लिए लिंक पे डालेंगे। बहुत सारे लोगों के दिल के दरवाजे उसके जरिए अल्लाह ने खोल दिए, और उसका नाम है कुरआन मेरे दिल की बहार। हर उस बंदे को आप जरूर सुनवा सकते हैं कि जिसका भी दिल कुरान में नहीं लगता। आप कहिए, ये तो बतलाओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिस्क भेजा है, फिर तुमने इसका कुछ हिस्सा हराम और कुछ हलाल करार दे दिया। आप पूछिए, क्या तुमको अल्लाह ने हुक्म दिया था या अल्लाह पर बोहतान ही करते हो? और जो लोग अल्लाह पर झूठ बोहतान बांधते हैं, इनका क्यामत की निस्बत क्या गुमान है? वाकई लोगों पर अल्लाह ताला का बड़ा ही फजल है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। देखिएगा, एक तरफ अल्लाह ताला है और दूसरी तरफ बातिल शिर्क जिनको लोग शरीक बनाते हैं। अल्लाह अल खालिक है, अल हादी है, सीधा रास्ता दिखाता है, फैसले करता है। इसके बरक्स दूसरे लोग तख्लीक करते नहीं किए जाते, यानी उनको पैदा किया जाता है, हक की तरफ रहनुमाई नहीं करते, उल्टा रास्ता और उल्टे फैसले। देखिएगा, दोनों को मानने वाले क्या एक ही जगह पे जाएंगे? सवाल पैदा होता है कि जब लोग गुनाहों के और इस तरह के मामलों में पड़ते हैं, और ख़ास तौर पे जब वो बहाने और उजर करते हैं, तो इसकी वजह क्या होती है? सवाल लिखिए। मैं अक्सर दीन से रुकने का बहाना या उजर क्यों पेश करती हूँ? नंबर एक, अल्लाह रसूल और कुरान से ताल्लुक बिल्कुल वाजबी होता है। कभी कभी नफसानी ख्वाहिशात गालिब आ जाती हैं, बस बुरी आदतें होती हैं जिसकी वजह से इंसान उजर करता है। सुस्ती, काहली, नींद बहुत आती है, बस दफा रिश्तेदार, दुनियावी तालीम और जॉब वजह बन जाती है। इसी तरह जाहिलियत और गफलत तारी होती है। एक और वजह होती है उजर बहाने करने वालों के लिए, आखरत के बारे में गैर संजीदा रवैया होता है। आज अल्लाह खोल कर अपना चेहरा दिखा देना, और गैब से जन्नत और जहन्नम दिखा दी जाए, फिर देखें उज़र बहाने ख़त्म, जो हो ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये बात बड़ी सच है, इस बारे के साथ जुड़ती है। फिर इसी तरह इखलास और तकवा की कमी होती है, निफाक भी होता है कभी कभी, और शैतान के मकायद है। ज़रूरी नहीं कि आप में ये सारी हों, कोई एक भी हो सकती है अगर आप किसी नेकी के मौके पे पीछे हट जाते हैं। तो आयत 37 से 60 में क्या देखा? कुरान जैसी कोई एक ही सूरत ले आओ। सरदाराने कुरैश का मकरो फरेब देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद कौम के लिए एक नाजुक मरहला थी, और आपकी इजहारे आजजी देखी, और हलाल और हराम को इख्तियार करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। और आप किसी हाल में हो, आप कहीं से कुरान पढ़ते हो, जो काम भी करते हो, हमको सब की खबर रहती है। कितना अच्छा लगा सुनकर आपको। हाँ, जब कोई बुरा काम करें फिर फिक्र है, और ख़ास तौर पे तो अल्लाह के नबी को यहाँ फरमाया गया, जब तुम इस काम में मशगूल होते हो और आपके रब से कोई चीज़ ज़र्रा बराबर भी गायब नहीं, ना ज़मीन में ना आसमान में, और ना कोई चीज़ इससे छोटी और ना कोई चीज़ इससे बड़ी, मगर ये सब किताबे मुबीन में है, अल्लाह के इल्म में भी है। याद रखो कि अल्लाह के दोस्तों पर कोई अंदेशा नहीं। हकीकी औलिया अल्लाह कौन होते हैं, उनका तज़किरा? ना कोई अंदेशा है ना वो गमगीन होते हैं। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और बुराइयों से परहेज करते हैं। इनके लिए दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत में भी खुशखबरी है। अल्लाह तआला की बातों में कुछ फर्क हुआ नहीं करता, ये बड़ी कामयाबी है। बस लोग कहते हैं कि औलिया कराम को नहीं मानना चाहिए। देखिए कुरान आपको बता रहा है औलिया अल्लाह हैं और उनकी खूबियाँ। क्या खूबियाँ हैं जरा नोट करिएगा। दुनिया की जिंदगी खौफ और गमों से पाक होती है, इनकी सुकून और इत्मीनान वाली होती है। दुनिया और आखिरत में इनके लिए खुशखबरियां हैं, ईमान और तकवा वाली जिंदगियां गुजारते हैं। सवाल पैदा होता है, आज के दौर के औलिया अल्लाह कौन है? तो नोट कीजिएगा, आज फितनों के इस दौर में दीन सीखने, इस पे अमल करने और इसको नाफिज करने में उजर और बहाने ना करने वाले औलिया अल्लाह हैं। बन जाइए औलिया अल्लाह, सब उजर बहाने खत्म। बाजमात नमाज मस्जिदों में पढ़ने वाले औलिया अल्लाह, जो 5 नमाजें पढ़ रहा है, लोग कहते हैं ये तो जी वली हो गया। इसी तरह बगैर सूद के कारोबार करने वाले, क्योंकि लोग कहते हैं इसके बगैर काम नहीं चलता। और आज का वली वो है जो पूरे दीन और किताब पर अमल करे और दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ न रखे, और हराम और हलाल की क़यूद की पाबंदी करने वाला और पूरे फ़ख्र से दीन पर अमल करने वाला। इस आईने में हम ढूंढेंगे खुद को, हम कहाँ रहते हैं, और ज़रूरत भी यही है कि हम इसको लें। एक रिवायत बहुत ही प्यारी है मुस्तनद अहमद की 10191, हसन बसरी से ये बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं, इसने एक रहमत को अहले ज़मीन के माबैन तकसीम किया, वो इनके लिए इसकी मौतों तक पूरी हो गई। यानी ज़िंदगी में हमें एक रहमत मिलती है, और 99 रहमतों को अपने औलिया के लिए ज़खीरा कर रखा है। और अल्लाह ताला ने जिस रहमत को ज़मीन वालों में तकसीम किया है, वो क़यामत के दिन इसको भी वापस करके 99 के साथ मिलाकर 100 पूरा करेगा। अल्लाह जल ना मिनहु। तो ऐसे लोगों को उस दिन भी फिर पूरी 100 मिलेंगी। और आपको इनकी बातें गम में ना डालें, तमाम तर गलबा अल्लाह ही के लिए है, वो सुनता है और जानता है। याद रखो, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, सब अल्लाह ताला ही के हैं। और जो लोग अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरे शुरका की इबादत कर रहे हैं, किस चीज़ की पैरवी कर रहे हैं? महज बेसनद ख्याल का इत्तबा कर रहे हैं और महज अटकलें लगा रहे हैं, यानी शिर्क की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है इस कायनात में। वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि तुम इसमें आराम करो, और दिन भी इस तौर पर बनाया कि देखने वाले का जरिया है। तहकीक इसमें दलाइल है इन लोगों के लिए जो सुनते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है, सुभान अल्लाह, वो तो किसी का मोहताज नहीं। इसी की मिल्कियत है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। तुम्हारे पास इस पर कोई दलील नहीं, क्या अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बातें लगाते हो जिसका तुम इल्म नहीं रखते? शिर्क की बड़ी वजह बेइल्मी। आप कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह ताला पर झूठ इफ्तरा करते हैं वो कामयाब ना होंगे, और हकीकत यह है कि मताउम फिर दुनिया सुम्मा इलैना मरजीउहुम, ये दुनिया में थोड़ी सी ऐश है, फिर हमारे पास इनको आना है, फिर हम इनको इनके कुफर के बदले सख्त अजाब चखाएंगे। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो जाए और इन चीज़ों में ना पड़े। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।